देखिए भाई आगे सबक व ईदा उतिफा ऐ ईदा उकी अल हतफु बिना अन अला वजूद आमिलैन बि अन उतिफा स्मानि अला मामूलैहिमा बि आतिफिन वाहिद وقال بعض شارح اللباب الأزهر عندي أن العطف ها هنا محمول على معناه اللغوي أي إمالة الاسمين نحو العاملين بأن يجعلا معموليهما. بھئی عطف کی بحث چل رہی ہے بھئی, اور صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ معطوف جو ہے وہ معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے. اب کن احوال کے اندر معطوف کا وہی حکم ہوگا جو معطوف علیہ کا ہے, اور کن احوال میں معطوف کا حکم معطوف علیہ سے الگ ہوگا؟ تو صاحب جامی نے آپ کو بتلایا تھا کہ وہ احوال جو معطوف علیہ کو عارض ہوتے ہیں ما قبل کے اعتبار سے, ان میں معطوف کا بھی وہی حکم ہوگا جو معطوف علیہ کا ہے. تو یہ قید جو لگا دی کہ وہ احوال جو معطوف علیہ کو عارض ہوتے ہیں ما قبل کے اعتبار سے, جب یہ قید لگائی تو ان احوال کو دراصل نکالنا مقصود ہے جو معطوف علیہ کو اپنی ذات کے اعتبار سے عارض ہوتے ہیں, جیسے اس کا مفرد ہونا یا تثنیہ ہونا یا جمع ہونا. تو اس کے اندر معطوف کا اس کی طرح ہونا ضروری نہیں, یا اسی طرح معطوف علیہ کا معرفہ یا نکرہ ہونا تو اس کے اندر بھی معطوف کا اس کے مطابق ہونا ضروری نہیں, یا اسی طرح معطوف علیہ کا معرب یا مبنی ہونا تو اس کے اندر بھی معطوف کا وہ حکم نہیں ہے جو معطوف علیہ کا ہے. تو معطوف علیہ کے وہ احوال جو اس کو عارض ہوتے ہیں ما قبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے, ما قبل کی طرف نظر کرتے ہوئے, ان احوال میں معطوف کا بھی وہی حکم ہے جو معطوف علیہ کا ہے. الا یہ کہ وہ مقتضی جو ان احوال کا تقاضا کر رہا ہے معطوف علیہ میں, وہ مقتضی معطوف میں منتفی نہیں ہونا چاہیے. ایک حکم کا ایک مقتضی ہے کس کے اندر؟ معطوف علیہ کے اندر. وہ مقتضی معطوف میں منتفی نہیں ہونا چاہیے, جیسے یا زیدو والحارسو. یا زیدو, یہ زید منادا ہے, اس پر الف لام نہیں لا سکتے کیونکہ اس صورت میں الف لام اور یا حرف ندا کا جمع ہونا لازم آتا ہے. تو یہ مقتضی یہاں تو ہے, یہاں تو یا اور الف لام جمع ہو جائیں گے, لیکن اگر معطوف جو ہے وہاں پر یا اور الف لام جمع نہیں ہو رہے کیونکہ وہاں پر درمیان میں معطوف علیہ آ رہا ہے یعنی زید, تو لہذا معطوف کا یہ حکم نہیں ہے کہ اس پر بھی الف لام کا لانا منع ہو, بلکہ اس پر آپ الف لام لا سکتے ہیں. چنانچہ یا زیدو والحارسو, کیونکہ وہ حکم جو الف لام کے نہ لانے کا تقاضا کر رہا تھا اور وہ یا اور الف لام کا جمع ہونا ہے, وہ معطوف میں موجود نہیں ہے. اور پھر آگے صاحب جامی نے بتلایا تھا آپ کو کہ بعض اوقات معطوف علیہ کو کچھ ایسے احوال عارض ہوتے ہیں جو اس کی اپنی ذات اور ما قبل دونوں کے اعتبار سے اس کو عارض ہوتے ہیں, دونوں کے اعتبار سے ہوتے ہیں. جیسے یا زیدو, اب یہ زید منادا ہے اور مبنی علی الضم ہے, تو یہ زید یہ مبنی علی الضم ہوا کس وجہ سے؟ دو وجہ سے. ایک تو یہ مفرد معرفہ ہے, یعنی معرفہ بھی ہے اور مضاف یا مشابہ مضاف بھی نہیں, کیونکہ یہاں مفرد کس کے مقابلے میں ہے؟ مضاف یا مشابہ مضاف. کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ منادا مضاف یا مشابہ مضاف ہو تو وہ منصوب ہوتا ہے, جیسے یا عبد اللہ. تو یا زیدو کیا ہے؟ مبنی علی الضم. کس وجہ سے؟ اس کی اپنی ذات کا بھی دخل ہے اور ما قبل کا بھی دخل ہے. اپنی ذات کا کیا دخل؟ کہ یہ مفرد ہے یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہیں اور معرفہ ہے. اور ما قبل کا بھی دخل ہے کہ اس پر حرف ندا داخل ہو رہا ہے یعنی یہ منادا ہے. تو دونوں چیزوں کے دخل کی وجہ سے یہ مبنی علی الضم ہوا. تو ایسے احوال جو معطوف علیہ کو عارض ہوتے ہیں اپنی ذات اور ما قبل دونوں کی طرف نظر کرتے ہوئے, تو اگر معطوف بھی معطوف علیہ جیسا ہوا تو ان میں بھی معطوف کا وہی حکم ہوگا جو معطوف علیہ کا. لہذا آپ زید پر عمر کا عطف کرنا چاہتے ہیں, تو جیسے زید مفرد معرفہ تھا اسی طرح عمر بھی کیا ہے؟ مفرد معرفہ. تو اب یہاں پر معطوف کا بھی وہی حکم ہوگا جو معطوف علیہ کا تھا, اور معطوف علیہ تو مبنی علی الضم تھا, تو عمر بھی کیا ہوگا؟ مبنی علی الضم. یا زید و عمرو, توجہ ہے؟ तो वो अहवाल जो मातूफुन अलैह को आरिज होते हैं अपनी जात के एतबार से और माकबल के एतबार से, दोनों के एतबार से जिसमें दोनों का दखल होता है, इन अहवाल के अंदर भी मातूफ अगर मातूफुन अलैह जैसा हुआ तो मातूफ का भी वही हुक्म होगा जो किसका था, मातूफुन अलैह का। और अगर मातूफ मातूफुन अलैह जैसा न हुआ फिर इसमें मातूफ मातूफुन अलैह के हुक्म में नहीं होगा। जैसे आप अब्दुल्ला का आतफ करना चाहते हैं इस जैद मुनादा पर, अब अब्दुल्ला ये तो जैद की तरह नहीं है, जैद तो मारिफा है और मुफरद है यानी मुजाफ या मुशावे मुजाफ नहीं, जबकि अब्दुल्ला के अंदर तो लफ्ज अब्द जो है वो मुजाफ है, तो लिहाजा इस सूरत में अब जैद तो मबनी अला जम है लेकिन मातूफ का ये हुक्म नहीं होगा और वो मनसूब होगा या जैदो व अब्दुल्लाह। और फिर बतलाया था कि चूंकि मातूफ का वही हुक्म होता है जो मातूफुन अलैह का होता है, इसीलिए मा जैदुन बिकाइमिन औ काइमन वला जाहिबुन अमरुन, इस जुमले के अंदर जाहिबुन पर रफा ही पढ़ेंगे, माकबल पर अतफ करते हुए नसब या जार नहीं पढ़ सकते। तो यहां अतफ मुफरद अलल मुफरद नहीं कर सकते बल्कि ये जाहिबुन अमरुन ये पूरा जुमला बनेगा और इस पूरे जुमले का अतफ हो जाएगा माकबल वाले पूरे जुमले पर। मा मुशाबे भी लेसा अपने इसम और खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो जाएगा और वला जाहिबुन अमरुन ये जाहिबुन अमरुन पूरा जुमला होकर ये अतफ हो जाएगा इसका माकबल वाले जुमले पर। और इसमें बतलाया था कि जाहिबुन या तो आप इसको खबर मुकदम बना दें और इसके अंदर हुआ जमीर राजे है अमरुन जो मुब्तदा मुअख्खर है, तो ये मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया, तो इस सूरत में ये जाहिबुन मरफू है खबर होने की वजह से। और या आप इसको मुब्तदा की किस्म सानी बना दें, जाहिबुन सीगा इसमें फाइल है और हर्फ नफी के बाद है और आगे अमरुन इसमें जाहिर को यह रफा दे रहा है तो इसके अंदर कोई जमीर नहीं, तो इस सूरत में सीगा इसमें फाइल अपने फाइल से मिलकर शिव जुमला होकर मुब्तदा, और ये ऐसा मुब्तदा है जिसकी कोई खबर नहीं भाई। हां अमरुन ये कायम मकाम खबर इसको करार दे देते हैं लेकिन हकीकत में तो ये खबर नहीं है, वैसे कायम मकाम खबर बनाया है और फिर मुब्तदा अपने कायम मकाम खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ और इसके अंदर बात भी पूरी है। और मुब्तदा वैसे तो मुस्नद इलैह होता है, क्या होता है, मुस्नद इलैह होता है, जैदुन कायमुन जैद मुस्नद इलैह है और कायमुन उसकी खबर, लेकिन ये जो मुब्तदा की किस्म सानी है वला जाहिबुन अमरुन, ये जो जाहिबुन है अगर आप इसको मुब्तदा बनाते हैं तो फिर ये मुस्नद है, तो मुब्तदा की किस्म सानी क्या होती है, मुस्नद होती है। और फिर उसके बाद एक एतराज हुआ था, एतराज ये कि आपने हमें बताया कि मातूफ का वही हुक्म होता है जो मातूफुन अलैह का हो, अगर मातूफुन अलैह के अंदर जमीर हो, जैसे पिछली मिसाल में कायमन या बिकाइमिन के अंदर क्या थी, जमीर थी जो मुब्तदा की तरफ लौट रही थी, जबकि आगे जाहिबुन के अंदर ऐसी कोई जमीर नहीं थी, तो लिहाजा इसलिए वो आतफ जायज नहीं था मुफरत का मुफरत पर। जबकि दूसरी मिसाल आगे वो जिक्र करेंगे उसके अंदर मातूफुन अलैह के अंदर तो जमीर है लेकिन मातूफ के अंदर जमीर नहीं, फिर भी बिल इत्तेफाक वो सूरत जायज है, जैसे अल्लदी यतीरु फयगज़बु ज़ैदुन अज़्ज़ुबाब, अल्लदी यतीरु फयगज़बु ज़ैदुन अज़्ज़ुबाब, वो चीज जो उड़ती है तो जैद को गुस्सा चढ़ता है वो मक्खी है। अब इसके अंदर देखो यगज़बु का आतफ यतीरु पर हो रहा है और यतीरु इसके अंदर हुआ जमीर है जो लौट रही है अल्लज़ी की तरफ, क्योंकि यतीरु सिला है अल्लज़ी इसमें मौसूल का और सिला जुमला है और जुमले का रबत देने के लिए क्या जरूरी, आइद का होना जरूरी, जबकि आगे फयगज़बु ज़ैदुन ये यगज़बु के लिए तो जैद इसमें जाहिर फाइल है और फाइल तो एक ही आता है लिहाजा यगज़बु के अंदर कोई जमीर नहीं, तो लिहाजा ये तो जायज नहीं होना चाहिए, यगज़बु का आतफ यतीरु पर जायज नहीं होना चाहिए लेकिन बिल इत्तेफाक ये सूरत जायज है, अल्लदी यतीरु फयगज़बु ज़ैदुन ज़ुबाब, बिल इत्तेफाक ये सूरत जायज है। तो उसका जवाब दिया था साहिब काफिया ने कि भाई ये फा सबब वाली है, ये फा क्या है, सबब वाली है, ये फा आतिफा है ही नहीं, अगर ये फा आतिफा होती तो फिर आप एतराज कर सकते थे, तो ये फा किस लिए है, सबब बयान करने के लिए, माकबल में फा सबबिया है जो सबब और मुसबब के दरमियान रबत देती है, माकबल में सबब जिक्र है उड़ना मक्खी का उड़ना और माबाद में मुसबब जिक्र है कि उसकी वजह से जैद को गुस्सा चढ़ता है। और मैंने बताया था फा आतिफा हो तो उसका तर्जमा कैसे करेंगे, फिर कैसा, फिर, और अगर फा सबबिया हो तो फिर उसका माना क्योंकि और इस वजह से, क्यों कैसे करेंगे, और इस वजह से, वजह यह कि बाज औकात सबब पहले होता है मुसबब बाद में
जी।
तो जब सबब पहले हो तो फिर इस वजह से फिर यह तर्जमा करेंगे, और बाज औकात मुसबब पहले होता है और सबब बाद में। मसलन आप हिदाया के अंदर दलाइल पढ़ते हैं तो वहां साहिब हिदाया जो है बाज औकात एक हुक्म बयान करते हैं और आगे फिर उसकी इल्लत बयान करते हैं और दरमियान में फा ले आते हैं कि यह हुक्म इस तरह है क्योंकि इसकी वजह यह है, क्योंकि इसकी वजह यह। तो देखो यहां क्योंकि के साथ तर्जमा करेंगे, जब मुसब्बब पहले हो और सबब बाद में, और अगर सबब पहले हो और मुसब्बब बाद में हो तो फिर इसका तर्जमा इस वजह से। तो अल्लज़ी यतीरु, वो चीज जो उड़ती है, फयग़ज़बु ज़ैदुन, तो उसकी वजह से ज़ैद को गुस्सा चढ़ता है, अज़्ज़ुबाबु, वो मक्खी है। तो बहरहाल साहिब काफिया ने तो सिर्फ इतना कहा कि ये फा सबबिया है, ये फा सबबिया है। अब साहिब जामी ने फिर आगे आपको बतलाया कि सबबिया के अंदर ये जो या आई है ये निस्बत वाली है, जैसे लाहौरियुन और लाहौरियतुन, लाहौरियुन लाहौर वाला और मुअन्नस के लिए क्या कहेंगे, लाहौरियतुन। तो जैसी ये या निस्बत वाली है, इसी तरह असबबिया के अंदर भी ये या क्या है, निस्बत वाली है। फा उस सबबियति, सबब वाली फा, सबब वाले फा। और जबकि मैंने बताया था कि ये या कभी मस्तर बनाने के लिए भी लाते हैं, जैसे फाइल से मस्तर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, फाइलियत, और इसका तर्जमा वो मस्तर वाला करेंगे और मस्तर के आखिर में ना आता है, तो फाइलियत का क्या तर्जमा होगा, फाइल होना। मफूलियत का क्या माना है, मफूल होना। तो देखो हम कभी ये या मस्तर बनाने के लिए लाते हैं और कभी ये या निस्बत के लिए लेकर आते हैं। तो बतलाया कि ये जो फा उस सबबियत के अंदर या ये या आई ये निस्बत के लिए है। तो साहिब काफिया ने क्या जवाब दिया कि अल्लज़ी यतीरु फयग़ज़बु ज़ैदुन ज़ुबाबु, इसके अंदर ये जो फा आई है ये सबबियत वाली है। अब क्या माना सबबियत वाली है, साहिब जामी ने उसकी तीन सूरतें जिक्र फरमाई थी कि तीन सूरतें हो सकती हैं। या तो साहिब काफिया के कहने का मतलब यह है कि इस फा का माना ही सबबियत है, ये इसका माना अतफ है ही नहीं, इस फा का माना ही सबबियत है, इसका माना अतफ है ही नहीं भाई, तो लिहाजा इस सूरत में इसका तर्जमा इसकी वजह से करेंगे। अल्लदीयती, वो चीज जो उड़ती है तो उसकी वजह से जैद को गुस्सा चढ़ता है, वो मक्खी है भाई। तो इस सूरत में ये फा जो है वो सिर्फ सबबियत वाली है, ये अतफ वाली है ही नहीं। या दूसरा माना ये हो सकता है, दूसरी सूरत इसमें ये हो सकती है कि ये फा सबबियत के लिए भी हो और अतफ के लिए भी हो, दोनों के लिए हो
जी।
दोनों के लिए हो, और जब दोनों के लिए है तो ये आगे आने वाले जुमले को पिछले जुमले से मिलाकर एक जुमले के हुक्म में कर देती है। तो ये फा बाद वाले जुमले को माकबल वाले जुमले से मिलाकर एक जुमले के हुक्म में कर देती है, तो लिहाजा यतीरु फयग़ज़बु ज़ैदुन ये सारा मिलकर एक जुमले के हुक्म में हुआ। और इसके अंदर तो यतीरु का के अंदर आईद मौजूद है, हुआ जमीर जो रबत दे रही है, तो जब ये पूरा एक जुमले के हुक्म में है तो एक आईद आ चुका है इसके अंदर, वो ही काफी है, अगले दूसरे जुमले में किसी आईद की जरूरत नहीं। चुनांचे इसको समझाने के लिए कि ये दोनों एक जुमले में कैसे हैं, साहिब जामीन ने यतीरु से पहले इजा के लफ्ज का इजाफा कर दिया। किसका, देखो वैसे यतीरु कहो तो ये पूरा जुमला है। मसलन मैं आपसे किसी परिंदे की बात कर रहा था और मैं आपसे कहता हूं यतीरु, ये परिंदा उड़ता है, यतीरु का क्या माना, उड़ता है, वो उड़ता है। किसी परिंदे की बात की तो आपने पूछा वह उड़ता है या नहीं, मसलन बास परिंदे परिंदों की नस्ल में से हैं लेकिन वो उड़ते नहीं है, जैसे शुतर मुर्ग है भाई, या जैसे मुर्गी है भाई, वो भी नहीं उड़ती। तो लिहाजा आपने मुझसे पूछा कि क्या ये उड़ता है, तो मैं आपसे कहता हूं यतीरु के वो उड़ता है। देखो बात पूरी है या नहीं, आपकी तसल्ली हो गई क्योंकि आपको जवाब मिल गया, बात पूरी हो गई। लेकिन अगर इसी यतीरु पर ईजा दाखिल कर दें तो अब यह पूरी बात नहीं। ईदा यतीरु, जब वो उड़ता है, ईदा यतीरु जब वो उड़ता है, अब मैं दो तीन दफा कहता हूं इज़ा यतीरु जब वो उड़ता है, तो आप मुझे कहेंगे कि बात तो पूरी कीजिए, ये बात तो पूरी ही नहीं है। इज़ा यतीरु जब वो उड़ता है, भाई बात पूरी हो गई कि अभी भी अधूरी है, अधूरी है बात, पूरी नहीं है इसके अंदर। तो अब देखो, इदा यतीरु फयग़ज़बु ज़ैदुन, जब वो उड़ती है, फयग़ज़बु ज़ैदुन, तो ज़ैद गजबनाक होता है, ज़ैद गुस्से होता है। अब देखो बात पूरी हो गई। तो इसीलिए साहिब जामी ने यहां पर अल्लदी से पहले ईदा का लफ्ज निकाला, अल्लदी ईदा यतीरु फयग़ज़बु ज़ैदुन ज़ुबाबु। बात समझ में आ गई। तो एक सूरत क्या साहिब काफिया ने कहा, यह फा सबब वाली है। साहिब जामी ने बतलाया कि एक सूरत यह है कि यह फा, इसका माना ही सबब है, यह इसका माना अतफ है ही नहीं। या दूसरी सूरत यह है कि यह सबब वाली है, यानी सबब और अतफ दोनों के लिए है, लेकिन यह दोनों जुमलों को एक जुमले के हुक्म में कर देती है। और तीसरी सूरत यह है कि यह फा सबब वाली है, कि यह कहना यह चाहते हैं कि यह फा है तो अतफ वाली ही, लेकिन चूंकि यह तरतीब का फायदा देती है, फा किस चीज का फायदा देती है, तरतीब का और ताकीब का, यानी जो फा का मदखूल होता है, जो फा जिस पर फा दाखिल होती है वो बाद में होता है और माकबल वाला पहले। जानी जैदन फा आमरुन, तो जैद फा से पहले है, मालूम हो वो पहले आया है, और फा का मदखूल अमर है, मालूम हुआ अमर बाद में आया है। जानी जैदन फा आमरुन, मेरे पास जैद आया फिर अमर आया। तो देखो फा किस चीज का फायदा देती है, ताकीब का, जमा का भी, और ताकीब कह लो या तरतीब कह लो, एक ही बात है कि एक चीज दूसरी चीज के अकब में है, एक चीज दूसरी चीज के पीछे है, यानी उनमें तरतीब है। तो तीसरी सूरत जिक्र कर रहे थे, साहिब काफिया ने फरमाया ये फा सबब वाली है, तो साहिब जामी फरमा रहे हैं इसकी एक सूरत यह है कि यूं कहा जाए कि ये फा है तो हातिफा ही, लेकिन ये तरतीब का फायदा दे रही है, ये तरतीब का फायदा दे रही है, और इससे सबबियत मफहूम हो रही है। इस तरतीब से क्या मफहूम हो रहा है, सबबियत। अल्लज़ी यतीर, वो चीज जो उड़ती है, फयग़ज़बु ज़ैदुन, फिर ज़ैद गुस्से होता है। देखो फा का तर्जमा मैं फिर के साथ कर रहा हूं, अतफ वाला तर्जमा कर रहा हूं। अल्लज़ी यतीर, वो चीज जो उड़ती है, फयग़ज़बु ज़ैदुन, फिर ज़ैद गुस्से होता है। देखो उड़ना पहले और जैद का गुस्सा होना बाद में, इससे सबबियत समझ में आती है, क्योंकि सबब भी पहले होता है और मुसबब उसके बाद पाया जाता है। तो ये फा तरतीब का फायदा दे रही है। तो इस फा की मुशाबहत आ गई फाए सबबिया से, जो शर्त और जजा में आती है, जो सबब और मुसबब में आती है, जो आतफ के लिए नहीं होती। इदा जाअ का ज़ैदुन फा अक्रिम हो, ये फा आतफ के लिए नहीं है, फा अक्रिम का आतफ इदा जाअ पर नहीं हो रहा भाई। इन दखलती दारा फा अंति तालिकुन, यह अंति तालिकुन का अतफ नहीं हो रहा माकबल पर, यह दरमियान में फा है। यह फा सिर्फ क्या बतला रही है कि माकबल सबब है और मा बाद मुसबब है, यूं को माकबल इल्लत है और मा बाद मालूल है, तवज्जो है। तो लिहाजा ये जो फा होती है, जो सबब और मुसबब के दरमियान आती है या शर्त और जजा के दरमियान आती है, यह फा सबबियत होती है, यह फा सबबियत का फायदा देती है। तो लिहाजा ये जो फा है यहां फयग़ज़बु ज़ैदुन, ये फा है तो आतिफा, लेकिन ये तरतीब का फायदा दे रही है। तो इसकी मुशाबहत हो गई किसके साथ, फाए सबबिया से, क्योंकि वहां पर भी सबब मुकद्दम होता है और मुसबब मुअख्खर होता है, और यहां पर भी फा तरतीब का फायदा दे रही है। तो इस फा की मुशाबहत आ रही है सबबियत से, तो लिहाजा इस फा से भी सबबियत मफहूम हो रही है, इस फा से भी सबबियत यहां पर मफहूम हो रही है। मालूम हुआ यतीरु सबब है और फयग़ज़बु ज़ैदुन उसका मुसबब है, तो उसकी वजह से मानवी तौर पर रबत आ गया जी। दूसरे जुमले का फा है तो आतिफा, फा है तो, लेकिन ये फा इससे क्या मफहूम हो रहा है, सबबियत भी मफहूम हो रही है। तो मालूम हुआ ये जो दूसरा जुमला है ये मुसब्बब है माकबल वाले जुमले का। बात समझ में आ गई। तो उसकी वजह से रबत आ गया, क्या आ गया दोनों में, मानवी तौर पर रबत आ गया। यानी माना यूं हुआ, अल्लज़ी यतीर, वो चीज जो उड़ती है, फयग़ज़बु ज़ैदुन बिसबबिही, तो ज़ैद गजबनाक होता है उसकी वजह से। तो देखो बिसबबिही यहां मफहूम हो रहा है, और बिसबबिही की जो हा ज़मीर है किसको राजे है, उसी अल्लज़ी को राजे है। तो पहले जुमले यतीरु के अंदर हुआ जमीर लाजे थी, उसने रबत दिया था, और फयग़ज़बु ज़ैदुन बिसबबिही इसके अंदर यह हा ज़मीर राजे है अल्लज़ी को, तो दोनों जुमलों में रबत आ गया। तो लिहाजा आप इसमें यूं भी कह सकते हैं कि मानवीय एतबार से रबत आया है। किस एतबार से? क्योंकि ये पहला सबब है और दूसरा मुसबब। या आप यूं भी कह सकते हैं कि भी सबब ही यहां मुकद्दर है, सबबियत मफहूम हो रही है तो भी सबब ही यहां पर क्या है, मुकद्दर है, और उसके अंदर जमीर लौट रही है और रबत दे रही है मौसूल के साथ, तो ये आइद आ गया। तो मातूफुन अलैह में भी आइद था और मातूफ में भी क्या आ गया, आइद आ गया, तो आतफ सही हो गया। तो गोया तीन एहतेमाल जिक्र कर दिए। साहिब काफिया ने तो फरमाया था कि ये फा सबब वाली है, तो साहिब जामी ने फरमाया कि फा सबब वाली होने का या तो ये माना है कि ये फा आतफ वाली है ही नहीं, इसका माना ही सबब है, या दूसरी सूरत ये है, ये सबब और आतफ दोनों के लिए है और ये दोनों को एक जुमले के हुक्म में कर देगी, लिहाजा एक रबत काफी है और वो यतीरू से आ चुका है। या तीसरा इसकी सूरत यह हो सकती है कि यूं कहा जाए कि यह फा है तो आतिफा ही, लेकिन यह तरतीब का फायदा दे रही है, तो इसकी मुशाबहत आ गई फाय सबबिया के साथ, तो यहां मानवी तौर पर रबत आ गया क्योंकि सबब होना मफहूम हो रहा है
जी।
सबब होना मफहूम हो रहा है, तो मानवी तौर पर रबत आया। और फिर एक और जवाब भी दिया था साहिब जामी ने, साहिब काफिया ने तो सिर्फ यह कहा था यह फा सबबियत वाली है, उसी की तीन सूरतें जिक्र कर दी साहिब जामी ने, और फिर एक और जवाब भी दिया कि यह फा है तो आतिफा ही, लेकिन कभी कभार आइद मुकद्दर होता है, तो यह भी मुमकिन है कि इस जुमले के अंदर आइद क्या हो जाए, उसको मुकद्दर मान लिया जाए, मुकद्दर निकाल लिया जाए। अल्लदी यतीरु फयगज़बु ज़ैदुन बितयारानिही, वो चीज जो उड़ती है, फयगज़बु ज़ैद, तो ज़ैद गजबनाक होता है, बितयारानी ही, उसके उड़ने की वजह से, अज़ुबाब वो मक्खी है, तो बितयारानी ही निकाल लें या बिही निकाल लें, कि उसकी वजह से ज़ैद गजबनाक होता है तो बिही निकाल लें, लेकिन मुराद वही है बितयारानी ही, उसके उसकी वजह से यानी उसके उड़ने की वजह से ज़ैद गजबनाक होता है तो वो मक्खी है। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर जी। देखिए भाई, कहते हैं वह ईदा उतीफा आई ईदा ऊकी अल अतफू बिना अन अला वजूद हामिलैन। भाई पहले सिर्फ मतन मतन देख लीजिए, मतन दूर दूर है भाई। देखिए कहते हैं वह ईदा उतीफा अला हामिलैन मुख्तलिफैन लम यजुज खिलाफ लिल फर्राई इल्ला फी नहवी फी दारी ज़ैदुन वल हुजरत अमरुन खिलाफ़ लिसी बवैह। मतन मिल गया, फिर एक दफा देख लीजिए। व इदा उतिफा अला आमिलैन मुख्तलिफैन लम यजुज खिलाफ़ लिल फर्राई इल्ला फी नहवी फी दारी ज़ैदुन वल हुजरत अमरुन खिलाफ़ लिसी बवैह। भाई आपको साहिब काफिया ने बतलाया ज़ाबता कि मातूफ का वही हुक्म होता है जो मातूफुन अलै का होता है। तवज्जो है, यानी अगर मातूफुन अलै फाइल है तो मातूफ भी फाइल होगा। जा अनी ज़ैदुन व अमरुन, ज़ैदुन मातूफुन अलै फाइल है जा अनी के लिए, तो अमरुन का इस पर आतफ है तो अमर भी क्या है, फाइल। अगर और अगर मातूफुन अलै मफूल है तो मातूफ भी मफूल होगा। जरब तो ज़ैदन व अमरन, या अमरन का आतफ किस पर, जैद पर, और जैद तो मफूल भी ही है जरब तो के लिए, तो अमरन भी मफूल भी ही है जरब तो के लिए। तो मातूफ का वही हुक्म होता है जो मातूफुन अलै का होता है। अब मसलन मैंने कहा, तवज्जो से सुनिए भाई, जा अनी ज़ैदुन व अमरुन, जानी ज़ैदुन व अमरुन, इस तरकीब के अंदर ज़ैदुन मरफू है क्योंकि यह फाइल है जानी के लिए, तो ज़ैदुन हुआ मामूल, और जानी ये जा क्या है, आमिल है भाई। बल्कि यूं कहो, मसलन जा ज़ैदुन व अमरुन, जा फेल और ज़ैदुन मातूफुन अलैह है और व अमरुन, यह अमरुन मातूफ है। इस जुमले के अंदर देखो, जा फेल है और ज़ैदुन मरफू लफ्जन इसका फाइल है क्योंकि फाइल मरफू होता है, तो आमिल क्या है, जा, और किस में अमल कर रहा है, जा ज़ैदुन में, तो ज़ैदुन हुआ मामूल, तो जा क्या, आमिल, दोहराए जुबान से, जा क्या, आमिल, और ज़ैदुन क्या, मामूल। और अब आप इस मामूल पर आतफ करना चाहते हैं अमर का, तो इसको कहेंगे आतफ आला मामूल आमिलिन, आतफ आला मामूल आमिलिन, एक आमिल के मामूल पर आतफ करना। तर्जमा आखिर से होगा आतफ आला मामूल आमिलिन, आमिल के मामूल पर आतफ करना। तो याद रखो ये जो मातूफ होता है मैंने आपको बतलाया था ये तकरार आमिल के दर्जे में होता है, तवज्जो है, मातूफ तकरार आमिल के दर्जे में होता है। और इसी तरह ये भी याद रखना बदल भी तकरार आमिल के दर्जे में होता है। भाई आपने पढ़ा तवाबे पांच हैं, सिफत है, आतफ है, ताकीद है, बदल है और आत्वे बयान है। सिफत और मौसूफ में से मौसूफ मकसूद होता है, सिफत यानी ताबे मकसूद नहीं, लिहाजा सिफत को निकाल दें, यहां ताबे यानी मकसूद। और मुअक्कद और ताकीद, इसके अंदर मुअक्कद मकसूद होता है, ताकीद मकसूद नहीं, लिहाजा ताकीद को भी एक तरफ रखते हैं। इसके अंदर भी ताबे मकसूद नहीं, सिफत में भी ताबे मकसूद नहीं और ताकीद में भी ताबे मकसूद नहीं। इसी तरह अत्फे बयान, अत्फे बयान में जो पहले आए उसको मातूफुन अलैह कहते हैं, जाअनी अबू हफ्सिन उमारो, तो अबू हफ्स से पता नहीं चल रहा था कौन मुराद है, तो आगे उमर से वजाहत हो गई कि इससे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो मुराद हैं। बात समझ में आ गई। तो यहां पर भी अबू हफ्स मकसूद है और उमर को सिर्फ वजाहत के लिए लाया गया, तो इसके अंदर भी ताबे मकसूद नहीं, लिहाजा यह भी निकल गया। सिफत उसमें भी ताबे यानी सिफत मकसूद नहीं, ताकीद के अंदर भी ताबे यानी ताकीद मकसूद नहीं, और अत्फे बयान के अंदर भी ताबे यानी अत्फे बयान मकसूद नहीं, लिहाजा ये तो निकल गए। जबकि बदल के अंदर ताबे मकसूद होता है, मतबूआ नहीं बल्कि जो बाद में आता है ताबे वो क्या होता है मकसूद। इसी तरह मातूफ बहार्फ है उसमें दोनों मकसूद होते हैं, मतबूआ भी और ताबे भी। तो मालूम हुआ सिर्फ बदल है और एक मातूफ है जिनमें ताबे भी मकसूद होता है, बदल और मातूफ में ताबे भी मकसूद होता है। बदल के अंदर मकसूद क्या ताबे, और आमिल ने बराह रास्त किस में अमल किया मतबूआ में, जानी जैदुन अखू का, मुखातब का एक भाई है उसका नाम जैद है, तो मैं जैद कह दूं या अखू का कह दूं, आपका भाई, दोनों का माना एक है, एक ही साथ पे दोनों दलालत कर रहे हैं, तवज्जो है, दोनों एक ही साथ पर दलालत कर रहे हैं। तो जाआ जैदुन अखू का, अब देखो इसके अंदर जैद मुबदल मिनहू है और अखू का बदल है, और दोनों में से मकसूद क्या है, बदल मकसूद होता है, मुबदल मिनहू यानी जैद यहां मकसूद नहीं। और जाआ ने रफा किसको दिया, जैद को, और आगे अखू का वो तो इस जैद के ताबिया है भाई, तवज्जो है। तो लिहाजा यहां पर आमिल बराह रास्त गैर मकसूद में अमल कर रहा है, जो मकसूद है उसमें तो बराह रास्त अमल ही नहीं कर रहा, तवज्जो है। लिहाजा यूं कहेंगे बदल तकरार आमिल के दर्जे में है, क्योंकि बदल तो बाद में आया है और असल मकसूद तो वही है, तो यूं समझो उस पर आमिल दोबारा दाखिल हो रहा है। गोया असल कलाम यूं है, जा जैदुन जा अखू का, असल में तो क्या था, जा जैदुन अखू का, और जैदुन अखू का में से मकसूद कौन, अखू का, अखू का, और जा तो रफा किसको दे रहा है, जैद को, और अखू का क्यों मरफू, क्योंकि वो जैद के ताबे है, अखू जैद पर जो एराब आएगा वही अखू का पर भी आएगा, तो असल मकसूद तो अखू का है, लेकिन आमिल उसमें बराह रास्त अमल कर ही नहीं रहा, आमिल तो जैद में अमल कर रहा है गैर मकसूद के अंदर, लिहाजा मकसूद के लिए कहते हैं गोया आमिल दोबारा आ गया है, मकसूद का दर्जा आला है, लिहाजा उसके लिए बराह रास्त अलग आमिल होना चाहिए। तो गोया जा जैदुन अखू का ये किस दर्जे में है, ये जा जैदुन जा अखू का, दोबारा जा आया और उसने अखू का जो मकसूद है उसको रफा दे दिया। बात समझ में आई। तो बदल किस दर्जे में होता है, तकरार आमिल के दर्जे में होता है, क्योंकि वो मकसूद है भाई। इसी तरह मातूफुन आले और मातूफ दोनों मकसूद होते हैं, तो लिहाजा मालूम हुआ जो बाद में आ रहा है वो भी मकसूद है, जब वो मकसूद है तो गोया उसमें भी आमिल दोबारा आ रहा है। तो आपने तो यूं कहा, तवज्जो से सुनो, जा जैदुन व अमरुन, लेकिन ये अमर तो मातूफ है और मैंने अभी आपको बतलाया कि बदल और मातूफ क्या है, तकरार आमिल के हुक्म में है, गोया इन पर आमिल दोबारा दाखिल हो रहा है, तो लिहाजा गोया यहां एक और जाआ है जो अमर को रफा दे रहा है। तो असल में कलाम गोया यूं था, अभी तो आपने क्या पढ़ा जाआ ज़ैदुन व अमरुन, लेकिन असल में यूं था जाआ ज़ैदुन जाआ अमरुन, जाआ ज़ैदुन जाआ अमरुन। लेकिन इस तरह अगर आप कहेंगे फिर तो कलाम बड़ा लंबा हो जाएगा। मसलन मैं आपसे कहना चाहता हूं जाअनी ज़ैदुन व अमरुन व खालिदुन व बकरुन, तो अब आपको कहना पड़ेगा जाआ ज़ैदुन जाआ अमरुन जाआ बकरुन जाआ खालिदुन, तो ये तो कलाम तवील हो जाएगा और नीस कलाम की का हुस्न खत्म हो जाएगा, बार बार एक लफ्ज का तकरार आ रहा है। तो लिहाजा एक आमिल को खत्म करते हैं और उसकी जगह हर्फ आतफ ले आते हैं। तो क्या था जा ज़ैदुन जा अमरुन, तो दूसरे जा को खत्म किया और उसकी जगह मसलन वाव ले आए, तो कलाम क्या बन गया जा ज़ैदुन व अमरुन, जा की जगह वाव आ गया भाई। तवज्जो है, तो गोया मालूम हुआ यह हर्फ अतफ नाइब है आमिल का, वही आमिल जो पीछे आया था जा उसी को दोबारा नहीं लाए, उसकी जगह क्या ले आए वाव ले आए, तो ये वो नाइब हुआ किसका आमिल का। फिर दोहराओ, हर्फ आतफ नाइब होता है किसका आमिल का, नहीं तवज्जो सबक की तरफ, हर्फ आतफ नाइब होता है किसका आमिल का। फिर दोहराइए, एक जाब्ता मैंने आपको ये बतलाया कि बदल और मातूफ ये तकरार आमिल के दर्जे में होते हैं, गोया आमिल इन पर दोबारा दाखिल हो रहा है क्योंकि ये दोनों मकसूद हैं, जब मकसूद हैं तो इन पर आमिल को आना चाहिए, तो ये दोनों तकरार आमिल के दर्जे में हैं, जबकि बाकी तवाब मकसूद नहीं, लिहाजा वो तकरार आमिल के दर्जे में भी नहीं, वहां मतबूआ जो होते हैं वो मकसूद होते हैं बाकी तवाब के अंदर। फिर आमिल को दोबारा लाए तो कलाम में हुसन नहीं रहेगा, लिहाजा उस आमिल की जगह क्या ले आए हर्फ अतफ ले आए, तो यह हर्फ अतफ नाइब है किसका आमिल का। तो जा ज़ैदुन व अमरुन ये वो नाइब है किसका आमिल का, और गोया असल कलाम क्या था जा ज़ैदुन जा अमरुन था भाई। बात समझ में आ गई, तो अब देखो तवज्जो से सुनो, जा ज़ैदुन व अमरुन जुमला क्या था जा ज़ैदुन व अमरुन, अब आप अमरुन का अतफ करना चाहते हैं जैद पर, और जैद आमिल है या मामूल है, जैद मामूल है जाआ आमिल है, तवज्जो है, तो गोया आप एक इसम का अतफ करना चाहते हैं एक मामूल पर, जब मामूल एक है जिस पर आप अतफ कर रहे हैं तो मालूम हुआ एक ही आमिल उसमें अमल कर रहा है, क्योंकि मामूल के अंदर एक आमिल हो सकता है, एक वक्त में एक मामूल में एक से ज्यादा आमिल नहीं हो सकते भाई। तो आपने अमर का अतफ किया किस पर जैद पर, यानी एक इसम का आपने अतफ किया मामूल पर, मामूल पर, और यह जायज है क्योंकि आप हर्फ अतफ दरमियान में लाए और हर्फ अतफ नाइब है किसका आमिल का, और यह एक आमिल का नाइब बन सकता है, यह एक आमिल का नाइब बन सकता है। याद रखो यह हर्फ अतफ नाइब है आमिल का, लेकिन यह ज़ईफ है कमजोर है हर्फ है, लिहाजा एक आमिल का तो नाइब बन सकता है, एक से ज्यादा आमिलों का यह नाइब नहीं बन सकता क्योंकि यह ज़ईफ है। तो अब जब मैंने कहा जाआ ज़ैदुन व अमरुन, यह वो को मैंने किसका नाइब बनाया जाआ ज़ैदुन व अमरुन, यह वो को मैंने किसका नाइब बनाया जाआ आमिल का, किसका जा, फिर सुनो जाआ ज़ैदुन व अमरुन, आपने अमर का अतफ किया किस पर जैद पर, और जैद आमिल है या मामूल है मामूल, तो आपने एक इसम का अतफ किया एक मामूल पर, और दरमियान में क्या लाए हैं हर्फ अतफ, तो हर्फ अतफ उस आमिल का क्या बन गया नाइब, तो आमिल कितने थे आमिल जैद के अंदर तो एक ही आमिल था जा, तो ये वो एक का नाइब बन गया। तवज्जो है, तो जाब्ता क्या हुआ कि एक इसम का अतफ किया जाए एक मामूल पर तो यह जायज है क्योंकि हर्फ आतफ नाइब हो जाएगा उस आमिल का और एक का नाइब बन सकता है। तवज्जो है, आप दूसरी सूरत ले आओ, तवज्जो से सुनो, ज़राबा ज़ैदुन अमरन व अमरुन बकरन, ज़राबा ज़ैदुन अमरन, देखो जराबा फेल है, जैदुन मरफू है इसका फाय, और आमरन क्या है मफूल, जराबा जैदुन आमरन, जैद ने पिटाई की अमर की, तो आमिल क्या है जराबा, जराबा अमल कर रहा है, और जैदुन मरफू फाइल ये मामूल है, और इसी तरह आमरन ये मफूल है, ये भी क्या है मामूल। तो अब आप इन दो मामूलों पर आतफ करते हैं, किस पर, दो मामूलों पर, चुनांचे आगे आप दो इसम लाते हैं, व आमरुन बकरन, व आमरुन बकरन, अमर का आतफ आपने किस पर किया, व आमरुन, आमर पर मैं क्या पढ़ रहा हूं रफा, और पीछे रफा किस पर आया था जैद पर, तो अमर का आतफ हुआ जैद यानी फाइल पर। और आगे बकरन में मंसूब लाया, इसका आतफ मैंने किस पर किया, पीछे जो अमरन मंसूब आया था, तवज्जो है, जुमला क्या था, जाराबा जैदुन अमरन व अमरुन बकरन, अमर दो दफा आ रहा है ना, एक में मफूल बना दिया एक में फाइल बना दिया, तो चाहे आप नाम बदल दें कोई और नाम ले आए, वैसे समझाने के लिए मिसाल जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि किताब में भी इसी तरह जिक्र होगी, उसी अमर को फाइल भी बना है और मफूल भी बनाएंगे, वरना आप कोई भी नाम ले आए, कोई और नाम ले आए, चलें जराबा जैदुन अमरन व बकरुन खालिदन यूं कर लें, जराबा जैदुन अमरन व बकरुन खालिदन। तो देखो जराबा क्या था आमिल, इसने जैदुन को क्या दिया रफा, और अमरन को क्या दिया नसब, तो जैद और अमर ये दोनों मामूल हो गए जराबा फेल के लिए। अब इन दो मामूलों पर आप आतफ करना चाहते हैं आगे दो इस्मों का, मसलन व बकरुन खालिदन, बकरुन का आतफ किस पर, जैदुन पर, क्योंकि जैद मरफू है, बकरुन भी क्या है मरफू, और आगे खालिदन, खालिदन का आतफ किस पर, अमरन पर, क्योंकि अमरन मंसूब है तो खालिदन भी क्या होगा मंसूब होगा, तवज्जो है। तो अब देखो मैंने बकर और खालिद इन दो इस्मों का आतफ किया किस पर, दो मामूलों पर, किस पर आतफ किया दो मामूलों पर, और उन दो मामूलों में आमिल एक ही है या अलग अलग हैं, जाराबा जैदुन अमरन, जैद को रफा किसने दिया जाराबा ने, और अमरान को नसब किसने दिया जाराबा ने, तो दोनों में आमिल एक ही है। तो आपने दो इस्मों का आतफ किया दो मामूलों पर जिनके अंदर एक ही आमिल है, तो ये हर्फ आतफ उस एक आमिल का नाइब बन गया, और एक का नाइब तो ये बन सकता है, लिहाजा ये सूरत भी बिल इत्तेफाक जायज है। आप दो इस्मों का आतफ करें किस पर, दो ऐसे मामूलों पर जिनके लिए एक ही आमिल हो, तो यह भी जायज है बिल इत्तेफाक। तो पहली सूरत क्या थी, जा जैदुन व अमरुन, आतफ अला मामूल आमिलीन था, आतफ था आतफ अला मामूल आमिलीन, एक आमिल के मामूल पर आपने आतफ किया था, और अब आपने क्या किया है, जराबा जैदुन अमरन व बकरुन खालिदन, अब आपने आतफ किया है दो इस्मों का किस पर, एक मामूल पर या दो मामूलों पर, दो मामूलों पर। तो पहले क्या था, आतफ अला मामूली आमिलिन, मामूली आमिलिन, अब इस मामूल की तस्निया ले आओ, मामूलैन, अला जारा दाखिल है लिहाजा हालत जरी में ले आओ, पहले क्या था मामूली आमिलीन, मुजा मुजाफिले थे, तो अब मामूलैन इसकी इजाफत कर दो आमिल की तरफ, तो मामूलैन का नून इजाफत से गिर जाएगा, तो क्या बन गया मामूल आमिलीन, और आमिल के साथ वाहिद भी लगा दो ताकि खूब वजाहत हो जाए, आतफ अला मामूल आमिलीन वाहिदीन, आतफ अला मामूल आमिलीन वाहिदीन, तर्जमा आखिर से होगा एक आमिल के दो मामूलों पर आतफ, एक आमिल के दो मामूलों पर आतफ। देखो जराबा जैदुन अमरन, ये एक ही आमिल के दो मामूल हैं, इन पर आपने आतफ किया है, तो ये क्या है, आतफ अला मामूल आमिलीन वाहिदीन, जुबान से दोहराएं भाई, आतफ अला मामूल आमिलीन वाहिदीन, और ये भी बिल इत्तेफाक जायज है क्योंकि आमिल एक है और हर्फ आतफ ने उसका नाइब बनना है, तो वो एक आमिल का आराम से नाइब बन जाता है। लेकिन अगर आमिल मुख्तलिफ हो, आमिल क्या हो, मुख्तलिफ हो, यानी दो इस्मों का आप आतफ करना चाहते हैं दो ऐसे मामूलों पर कि दोनों के अंदर आमिल अलग है, एक के अंदर एक मामूल में एक चीज आमिल है, दूसरे मामूल में दूसरी चीज आमिल है, तो याद रखो इसमें फिर इख्तिलाफ है। देखो अगर आप आतफ करें आला मामूली वाहिदीन वो भी जायज, आप आतफ करें आला मामूल है आमिलिन वाहिदीन ये भी जायज, लेकिन अगर आप आतफ करें आला मामूल है आमिलैनी, अगर आप आतफ करें आला मामूल है आमिलैनी, दो आमिलों के दो मामूलों पर आप आतफ करना चाहें तो इसमें इख्तिलाफ है। इमाम सीबवे फरमाते हैं ये मुतलकन जायज नहीं। इमाम सीबवे क्या फरमाते हैं? मुतलकन जायज ही नहीं, किसी भी सूरत में नहीं जायज है। दलील क्या उनकी? दलील यही कि हर्फ आतफ एक आमिल का तो नाइब हो सकता है, दो आमिलों का नाइब नहीं हो सकता। जबकि इमाम फर्रा फरमाते हैं यह मुतलकन जायज है, ये मुतलकन तमाम सूरतों में जायज है, हर्फ आतफ दो का नाइब बन सकता है। जबकि जमहूर फरमाते हैं, जमहूर नहवी यानी अक्सर नहवी, जमहूर नहवी फरमाते हैं कि अगर कि वो दो इसम जिनका अतफ किया जा रहा है अगर मजरूर मुकद्दम है तो फिर ये अतफ जायज है, अगर मजरूर मुकद्दम है तो फिर ये जायज है। जैसे इसकी मिसाल ये किताब में दी हुई है भाई, ये जो मतन ये जहां से आज का सबक शुरू हुआ इससे आगे 6-7 सत्रें आगे देखिए भाई, मा कुल्लू सौदा अतमरतन व बैजा अशहमतन, मिल गई मिसाल जहां से आज हमने सबक शुरू किया है उससे 5-6-7 सत्रें आगे है भाई, मा कुल्लू सौदा अतमरतन व बैजा शहमतन। सौदा, सौदा मुअन्नस है अस्वद की, अस्वद की काली चीज, अस्वद का माना काली चीज, सौदा का माना भी काली चीज, लेकिन अस्वद मुजक्कर के लिए है और सौदा मुअन्नस के लिए है। और तमरतुन, तमरा खजूर को कहते हैं, वह बैजा, और बैजा जो है ये मुअन्नस है अबियज की, अबियज का माना भी सफेद और बैजा का माना भी सफेद है, अलबत्ता अबियज मुजक्कर के लिए आता है और बैजा मुअन्नस है उसी की बई। और याद रखना अबयज अफअल वजन है, ये अफअल वजन इसमें तफजील में भी आता है और सिफते मुशब्बा में भी आता है, तो लबा जहां भी अफअल वजन देखते हैं समझते हैं शायद ये हमेशा इसमें तफजील होगा, हालांकि अफअल इसमें तफजील भी होता है और सिफते मुशब्बा भी। इसमें तफजील का माना ज्यादा के साथ करते हैं, जैसे अजरब, अजरब का क्या माना? ज्यादा पिटाई करने वाला। जबकि अबियज का माना ज्यादा सफेद नहीं है बल्कि इसका माना है सफेद, ये इसमें तफजील नहीं है। अहमर का माना सुर्ख है, ज्यादा सुर्ख नहीं है क्योंकि इसमें तफजील नहीं है, ये अफअलु सिफती है। तो अफअलु इसमें तफजील का भी आता है और अफअलु सिफत मुशब्बा के अंदर भी आता है, इसीलिए आप गर्दानों में पढ़ते हैं व अफअलु तफजील मुजक्कर मिनहू, वह अफअलु तफजील, अफअलु तफजील, तफजील वाला अफअलु, मालूम हुआ एक सिफत मुशब्बा वाला भी अफालू होता है, तो उससे फर्क करने के लिए। बात समझ में आ गई? तो ये बैजा अबियस की मुअन्नस है सफेद। और शहमतुन, शहमतुन याद रखिए चर्बी को कहते हैं, चर्बी क्या होती है? सफेद होती है। तो देखिए मा कुल्लू सौदा अतमरतन व बैजा अशहमतन, मा कुल्लू सौदा अतमरतन व बैजा अशहमतन, देखो मा मुशाबे भी लैसा, और ये क्या अमल करता है? अपने इसम को रफा देता है और खबर को नसब। तो ये कुल्लू सौदा ये है इसका इसम, इसलिए कुल्लू इस पर रफा पढ़ेंगे, और कुल्लू मुजाफ होता है तो आगे सौदा क्या है? मुजाफिले है, और सौदा गैर मुनसरिफ है, कुल्लू सौदा गैर मुनसरिफ है। क्यों गैर मुनसरिफ है? क्योंकि ये अलिफ तानीस है, सौदा के आखिर में ये तानीस का सीगा है, मुअन्नस का सीगा है ना, तो ये अलिफ तानीस है, और अलिफ तानीस दो किस्म पर है, मकसूरा और ममदूदा, और दोनों दो सबबों के कायम मकाम हैं। तो ये सौदा के अंदर जो अलिफ ममदूदा आया ये दो सबबों के कायम मकाम है, तो ये गैर मुनसरिफ है, और गैर मुनसरिफ का जर फतहा के साथ आता है। तो कुल्लू सौदा, तो सौदा इस वक्त मजरूर है लेकिन इसका जर आता ही फतहा के साथ है। तो ये कुल्लू सौदा अमुजा मुजाफिले मिलकर ये मा का इसम, और तमरतन यह मंसूब है, यह है मा मुशाबे भी लेसा की खबर, तवज्जो है। और आगे है वह बैजा अशहमतन, तो बैजा का अतफ हो रहा है सौदा पर, किस पर?
सौदा।
और सौदा का एराब बोलिए, मजरूर है, मुजाफिले है, किसने जर दिया? कुल्लू ने। तो मालूम हुआ बैजा का अतफ सौदा पर है और सौदा के अंदर आमिल कुल्लू है, और शहमतन का अतफ तमरतन पर है और तमरतन के अंदर आमिल क्या है? मा मुशाबे भी लैसा, क्योंकि ये उसकी खबर है। तवज्जो है। तो यहां पर देखो दो इस्मों का अतफ हो रहा है, बैजा और शहमा का, दो मामूलों पर यानी सौदा और तमरा पर, और वो उन दोनों के अंदर आमिल अलग अलग हैं। सौदा के अंदर आमिल कुल उनका लफ्ज है और तमरतन के अंदर आमिल मा मुशाबे भी लैसा है। तो ये क्या हुआ? आतफ अला मामूल आमिलैन। तो ये क्या हुआ? आतफ अला मामूल आमिलैन हुआ, तर्जमा आखिर से होगा अतफ अला मामूल आमिलैन, दो आमिलों के दो मामूलों पर अतफ हो रहा है। तो इसमें याद रखो कि जमहूर कहते हैं अगर मजरूर मुकद्दम हो तो जायज है, और यहां पर भी वह बैजा अशहमतन, तो पहला इसम बैजा है और इसका अतफ किस पर हो रहा है? सौदा पर, और वो मजरूर है, तो लिहाजा बैजाक भी क्या हुआ? मजरूर। तो मजरूर मुकद्दम है और शहमतन जो मंसूब है वो मुअख्खर है। तो जमहूर कहते हैं, जमहूर कहते हैं कि अतफ अला मामूल आमिलैनी ये उस सूरत में जायज है जब मजरूर मुकद्दम हो, अगर मजरूर मुकद्दम ना हो फिर जायज नहीं है। इमाम फर्रा फरमाते हैं मुतलकन तमाम सूरतों में जायज है, चाहे मजरूर मुकद्दम हो या मुकद्दम न हो, जबकि इमाम सीबवे फरमाते हैं कि तमाम सूरतों में जायज नहीं है भाई, यानी इसकी कोई सूरत जायज नहीं, चाहे मजरूर मुकद्दम हो या न हो, जबकि जमहूर कहते हैं कि मजरूर मुकद्दम हो तो यह आतफ जायज है और अगर मजरूर मुकद्दम नहीं तो आतफ जायज नहीं। जमहूर की दलील यह है कि हमने अरबों से सुना है, अरब के फसीह व बलीग शुआरा और अरब के फसीह व बलीग लोग जो हैं वो जब मजरूर मुकद्दम हो तो अतफ कर दिया करते हैं, वो अतफ कर दिया करते हैं अला मामूल आमिलैनी पर जब मजरूर क्या हो? मुकद्दम हो। तो लिहाजा वो सूरतें जिनमें मजरूर मुकद्दम हो वो जायज हैं भाई, और नीज नीज बाकी सूरतों में जायज नहीं भाई। क्यों? मजरूर में सिर्फ क्यों जायज है और बाकी में क्यों नहीं जायज? कहते हैं वजह यह कि हर्फ अतफ ज़ईफ है, वो दो आमिलों का नाइब नहीं हो सकता, लेकिन हमने अरबों से सुना है कि जब मजरूर मुकद्दम हो तो वह अतफ कर देते हैं। तो मालूम हुआ यह मसला खिलाफुल कियास है, क्योंकि कियास तो क्या तकाजा करता है? हर्फ अतफ कमजोर है, यह दो का नाइब नहीं बन सकता, लेकिन अरब जब मजरूर मुकद्दम हो तो वह अतफ कर दिया करते हैं। तो यह मालूम हुआ यह मसला क्या है? खिलाफुल कियास, खिलाफ कानून है, जाब्ते के मुताबिक तुम यह अतफ जायज ही नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने फसीह व बलीग अरबों से सुना है जब मजरूर मुकद्दम हो तो वह अतफ कर देते हैं। तो उनका यह अतफ जाब्ते के मुताबिक हुआ या खिलाफुल कियास हुआ? खिलाफुल कियास, क्योंकि हरफ अतफ को वो दो का नाइब बना रहे हैं और हरफ अतफ तो दो का नाइब नहीं हो सकता, तो ये अतफ जो वो कर रहे हैं वो खिलाफ कानून है, ये खिलाफ कियास है, और जो चीज खिलाफ कियास होती है वो अपने मौरिद पर बंद रहती है, उस पर आप और चीजों को कियास नहीं कर सकते। तो हमने मजरूर जब मुकद्दम है वो सूरतें हमने अरबों से सुनी है, इसलिए मजरूर मुकद्दम हो तो इस किस्म का अतफ जायज है, यानी अतफ अला मामूल आमिलैनी, और अगर मजरूर मुकद्दम ना हो तो फिर जायज नहीं। तो बाकी सूरतें वो अपने कियास पर बाकी रहेंगी, और कियास तो ये तकाजा करता था कि ये जायज नहीं होना चाहिए, तो बाकी सूरतें जायज नहीं हैं। बात समझ में आ गई। जबकि इमाम फर्रा फरमाते हैं, इमाम फर्रा की दलील सुने, वो फरमाते हैं कि अरब के फसीह व बलीग लोग जब मजरूर मुकद्दम हो तो अतफ अला मामूल आमिलैन कर देते हैं, जब एक सूरत के अंदर वो आतफ कर देते हैं तो मालूम हुआ बाकी सूरतों में भी आतफ जायज होगा, क्योंकि जब एक सूरत के अंदर हर्फ आतफ दो का नाइब बन गया तो तो बाकी सूरतों में भी उसने दो का नाइब ही बनना है ना, कोई नई चीज तो नहीं होनी वहां पर। तो जब एक जगह दो का वो नाइब बन रहा है तो मालूम हुआ दूसरी जगह भी वो दो का नाइब बन सकता है, लिहाजा तमाम सूरतें जायज हैं, वो इसी पर कयास करते हैं। जो जबकि जमहूर फिर जवाब देते हैं कि अरबों से जो हमने सूरत सुनी है वो सिर्फ मजरूर मुकदम होने वाली सूरत ही सुनी है। तो और यह मसला मौकूफ है सिमा पर, क्योंकि यह लुगत का मसला है, जुबान का मसला है, और जुबान के कवानीन सिमा पर मौकूफ होते हैं कि अरब किस तरह बोलते हैं उसको सुना जाए, तो अरबों को सुना जाएगा इसके अंदर, तो यह सिमा पर मौकूफ है, इसके अंदर कयास जारी नहीं हो सकता, बाकी सूरतों का आप इस पर कयास नहीं कर सकते। जबकि इमाम सीवा फरमाते हैं कि नहीं, किसी सूरत में यह जायज नहीं, किसी सूरत में जायज नहीं, क्योंकि हर्फ आतफ दो का नाइब नहीं हो सकता। तो हम उनको कहते हैं कि देखिए बास सूरतों में अरबों ने क्या किया है, जब मजरूर मुकदम होता है तो अरब के फसीह बलीग लोग क्या कर देते हैं, आतफ कर देते हैं। तो इमाम सीबोए फरमाते हैं कि इस सूरत में वहां वो जो खाफिज है, वो जो जर देने वाला है, वो महजूफ होता है। वो क्या होता है, महजूफ होता है, वो वहां महजूफ निकालना पड़ेगा। चुनाचे यहां पर भी वो फरमाते हैं मा कुल्लू सौदा अतमरतन व बैजा अशहमतन, यहां पर ये बैजा का आतफ सौदा पर नहीं हो रहा, वो फरमाते हैं तवज्जो है, बैजा का आतफ सौदा पर नहीं हो रहा बल्कि बैजा यहां कुल लफ्ज मुजाफ महजूफ है व कुल्लू बैजा अशहमतन, तो वो कुल जो महजूफ है उसने जर दिया था बैजा को, इस बैजा का आतफ सौदा पर नहीं, वो पहला वाला कुल इसको जर नहीं दे रहा बल्कि यहां एक और कुल मौजूद था जिसको हजफ कर लिया गया। बात समझ में आ गई, तो चुनांचे वो ये जवाब देते हैं इमाम सीबुए, मसला समझ में आ गया। तो मालूम हुआ आतफ अला मामूले हामिलिन वाहिदिन बिल इतफाक जायज है, अतफ अला मामूले आमिलिन वाहिदिन बिल इतफाक जायज है, जरा बजैदन अमरन व बकरोन खालिदन ये बिल इतफाक जायज है, क्योंकि हरफ अतफ एक कामिल का नाइब बन जाएगा। लेकिन अगर अगर अतफ किया जाए अला मामूले आमिलैनी, दो आमिलों के दो मामूलों पर अतफ किया जाए, जैसे मा कुल्लु सौदा तमरतन व बैजा शहमतन के अंदर है, तो इसमें जमहूर कहते हैं कि अगर मजरूर मुकदम हो तो जायज है, बाकी सूरतों में जायज नहीं। इमाम फर्रा फरमाते हैं तमाम सूरतों में जायज, जबकि इमाम सीबवे फरमाते हैं कि यह किसी भी सूरत में जायज नहीं है। तफसील समझ में आ गई, अब तर्जमा भी इसका देख लीजिए, मा कुल्लू सौदा अतमरतन, नहीं है कुल्लू सौदा अ हर काली चीज, तमरतन खजूर, हर काली चीज खजूर नहीं होती, वह बैजा अशहमतन और हर सफेद चीज चर्बी नहीं होती, हर काली चीज खजूर नहीं होती और हर सफेद चीज चर्बी नहीं होती, यानी यूं कहो उर्दू में जैसे कहते हैं हर चमकती हुई चीज सोना नहीं है भाई। बात समझ में आ गई, अब मतन मतन देखिए भाई, कहते हैं वह ईदा उतीफा अला आमिलैनी, और जब आतफ किया जाए दो आमिलों पर, तवज्जो से सुनो, और वह ईदा उतीफा और जब आतफ किया जाए अला आमिलैनी, किस पर, दो आमिलों पर, दो आमिलों पर आतफ करते थे या दो मामूलों पर आतफ करते थे, दो मामूलों पर, तो यहां तो अला आमिलैन ही है, तो लिहाजा शारहीन फरमाते हैं यहां आमिलैन से पहले मामूलैन का लफ्ज मुजाफ महजूफ निकाल लेंगे। अभी मैंने क्या बताया था, आतफ अला मामूलै आमिलैन ही, तो यहां भी मामूलै लफ्ज महजूफ है भाई। तो कहते हैं वह ईदा उतीफा अला मामूलै आमिलैन ही मुख्तलिफैन, और जब आतफ किया जाए दो आमिलैन ही मुख्तलिफैन, दो मुख्तलिफ आमिलों के दो मामूलों पर, वह ईदा उतीफा अला मामूलै आमिलैन ही मुख्तलिफैन, जब दो मुख्तलिफ आमिलों के मामूलों पर आतफ किया जाए, तो यहां मामूलैन का लफ्ज महजूफ है। सवाल कि साहिब काफिया ने मामूलैन के लफ्ज को क्यों हजफ किया, जिक्र क्यों नहीं किया, होना तो यूं चाहिए था ना, वैदा उतीफा अला मामूलै आमिलैनी, लेकिन साहिब काफिया ने क्या किया, मामूलैन के लफ्ज को हजफ कर दिया, तो उसकी वजह क्या है। तो शारहीन फरमाते हैं कि दरअसल साहिब काफिया बतलाना यह चाहते हैं कि इस मसले का सारा दारोमदार आमिलों पर है। अगर आमिल एक है और दो मामूल हैं उसके और उन दोनों पर आप आतफ करना चाहते हैं तो बिल इतफाक जायज, और अगर आमिल दो हैं और उनके दो मामूलों पर आप अतफ करना चाहते हैं तो फिर इख्तिलाफ है। आमिल एक हो जाराबा जैदुन अमरन व बकरोन खालिदन, यहां जाराबा एक ही आमिल था दोनों मामूलों में तो ये बिल इतफाक जायज। और माकुल्लु सौदा अतमरतन व बैजा अशहमतन, यहां आमिल दो हैं तो इसलिए इसके अंदर इख्तिलाफ है। मालूम हुआ इस मसले का सारा दारोमदार किस पर है, आमिल पर है, इसलिए साहिब काफिया ने मामूलैन यानी मुजाफ को हजफ कर दिया। तो एक जवाब क्या कि साहिब काफिया ने मामूलैन के लफ्ज को क्यों हजफ किया, क्योंकि वो बतलाना चाहते हैं इस मसले का सारा दारोमदार किस पर है, आमिल पर है, आमिल एक है तो बिल इतफाक जायज, आमिल दो है तो फिर जायज नहीं। और नीज इसलिए क्योंकि नहव के अंदर आपने पढ़ा है आमिल और मामूल, आमिल जो अमल करने वाला है और मामूल वो जिस पर उसने अमल किया है, तो आमिल पहले आता है और मामूल बाद में आता है। उमूमन भाई, उमूमन मामूल बाद में आता है, यानी आमिल मुकद्दम होता है और मामूल बाद में आता है। और यहां पर अगर साहिब काफिया यूं कह देते अला मामूल आमिलैनी, तो मामूलैन के लफ्ज का मुकद्दम होना लाजिम आता किस पर, आमिल पर, हालांकि मामूल तो कब आता है, आमिल के बाद आता है। तो उन्होंने लफ्जों में भी पसंद नहीं किया कि मामूल के लफ्ज को क्या कर दें, आमिल पर मुकद्दम कर दें। बात समझ में आ गई। तो दो वजह जिक्र कर दी, एक ये वजह कि इस मसले का दारोमदार आमिल पर है ये बतलाना चाहते हैं, दूसरी वजह यह कि इस सूरत में लफ्जों में मामूल का मुकद्दम होना लाजिम आता था, हालांकि मामूल को आमिल पर अक्सर क्या होता है, मुअख्खर ही होता है, तो लफ्जों में भी मुकद्दम करना पसंद नहीं किया। तो कहते हैं वह इदा उतिफा आला मामूल आमिलैन मुख्तलिफैन, और जब आतफ किया जाए दो मुख्तलिफ आमिलों के दो मामूलों पर, लम या जुज, तो यह जमहूर के नजदीक जायज नहीं है, खिलाफ लिल फर्रा बखिलाफ इमाम फर्रा के, वो फरमाते हैं जायज है। इल्ला फी नहवी, मगर सिर्फ इस जैसी मिसालों में, फिदारी जैदुन वल हुजरती अमरुन, फिदारी जैदुन उस घर में जैद है, वल हुजरती अमरुन और उस कमरे में अमर है, हुजरा कहते हैं कमरे को, कमरे को। तो देखो फिदारी जैदुन वल हुजरती अमरुन, तो फिदारी फी जारा अदारी मजरू, जार मजरून मिलकर ये मुतालिक होंगे साबितुन से और ये खबर मुकद्दम, और जैदुन ये क्या है मुब्तदा मुअख्खर, और आगे वलहुजराती अमरुन, इन दो इस्मों का आप अतफ करना चाहते हैं पीछे, अलहुजरा का अतफ करना चाहते हैं दार पर, और दार में आमिल क्या फी, फी उसको जर दे रहा है, और अमरुन का अतफ करना चाहते हैं किस पर, जैद पर, और जैद में आमिल क्या इब्तिदा, क्योंकि वो मुब्तदा है। तो आप दो इस्मों का अतफ करना चाहते हैं दो मामूलों पर, और उन दोनों के आमिल अलग अलग हैं, अदार के अंदर आमिल फी और जैदुन के अंदर आमिल इब्तिदा। तो इस सूरत में जमहूर के नजदीक जब मजरूर मुकद्दम हो तो वो जायज होता है, और यहां पर भी वल हुजरती अमरुन, हुजरती मजरूर क्या है मुकद्दम है, तो जमहूर के नजदीक सिर्फ इस सूरत में जायज है। तो ये माना है इल्ला फी नह, फिर देखिए लम यजूज खिलाफ लिल फर्राई, के जायज नहीं है बखिलाफ इमाम फर्रा के, इल्ला फी नहवी, मगर सिर्फ इस जैसी मिसालों में, जमहूर के नजदीक जायज नहीं है मगर सिर्फ इस जैसी मिसालों में, फिदारी जैदुन वल हुजरती अमरुन, उस घर में जैद है और उस कमरे में अमर है, खिलाफ लिसी बवै, बखिलाफ किसके, इमाम सी बवै के, वो फरमाते किसी भी सूरत में जायज नहीं। बात समझ में आ गई। अब इस सारे को शरा के साथ देखिए, कहते हैं वह ईदा उतिफा अई ईदा उल अतफू बिना अन अला वजूद आमिलैन। अच्छा इधर देखिए मतन की इबारत क्या थी, वह ईदा उतिफा अला आमिलैनी, तवज्जो है मतन पे सिर्फ नजर रखो, वह ईजा उतिफा अला आमिलैनी, जब अतफ किया जाए दो आमिलों पर, और मैंने बताया अतफ तो आमिलों पर नहीं हो रहा बल्कि किस पर हो रहा है, मामूलों पर हो रहा है, तो यहां मुजाफ महजूफ है। तो साहिब काफिया की जाहिरी इबारत सही नहीं लग रही तो लिहाजा मुजाफ महजूफ निकाला तो इबारत ठीक हो गई। तो बहरहाल शारहीन ने इसकी तीन सूरतें जिक्र किया इबारत के ठीक करने की। एक सूरत मैंने जिक्र कर दी कि मामूल आमिलैन कर दें, मामूलैन का लफ्ज यहां मुजाफ महजूफ निकाल लें, एक सूरत यह। दो और सूरतें साहिब जामी जिक्र करेंगे। एक सूरत यह, इधर देखिए कि इजा उतीफा, जब अतफ किया जाए, बिना अन आला वजूदी आमिलैनी, बिना अन, ये साहिब जामी जिक्र कर रहे हैं, बिना अन आला वजूदी आमिलैनी, दो आमिलों के वजूद की बिना पर जब अतफ किया जाए, दो आमिलों के वजूद की बिना पर। मालूम हुआ इस आला को उतीफा से न जोड़ो, अगर आप इस आला को उतीफा से जोड़ेंगे फिर माना खराब हो रहा था। वह इजा उत, तवज्जो से सुनो, वह इजा उतीफा आला आमिलैनी, जब अतफ किया जाए दो आमिलों पर
जी।
ये तो माना ठीक नहीं बनता, दो आमिलों पर अतफ की बात तो नहीं हो रही, बल्कि दो मामूलों पर अतफ की बात हो रही है। तो लिहाजा जाहिर इबारत गलत बन रही थी, क्योंकि आला को आप जोड़ रहे थे उतीफा से। जब अतफ किया जाए केस पर, आला आमिलैनी, दो आमिलों पर, तो माना सही नहीं हो रहा था। तो साहिब जामी आपको बतलाएंगे कि ये आला आमिलैनी, ये जो जार मजरूर है, इसको उतीफा से न जोड़ें, इसको उतीफा से न जोड़ें, बल्कि ये आला बिनाइया है और इसको बिना अन से जोड़ें। किससे जोड़ें? आई बिना अन आला वजूदी आमिलैनी, और आमिलैन से पहले वजूद का लफ्ज मुजाह महजूफ निकाल लें। बिना अन आला वजूदी, जब आतफ किया जाए बिना अन आला वजूदी आमिलैनी, दो आमिलों के वजूद की बिना पर, दो आमिलों पर आतफ ना किया जाए, दो आमिलों के वजूद की वजह से आतफ किया जाए, दो आमिलों के वजूद की वजह से आतफ किया जाए। आतफ तो दो मामूलों पर ही करना है, लेकिन किस वजह से, किस बिना पर? दो आमिलों के वजूद की वजह से। इस किस्म का जो आतफ है उसके अंदर इख्तिलाफ है भाई। तो ये एक सूरत जिक्र करेंगे साहिबे जामी कि इस आला को उतीफा से न जोड़ें, बल्कि ये आला क्या है? बिनाइया है, और इसके लिए बिना अन अलग निकाल लें। तवज्जो है, बिना अन, तो इसको मफूल लहू बनाएं। क्या बनाएं? मफूल लहू किसे कहते हैं? जो माकबल फेल की इल्लत बयान करे। इजा उतीफा, जब अतफ किया जाए, बिना अन आला वजूदी आमिलैनी, दो आमिलों के वजूद की बिना पर, दो आमिलों की वजह से, यूं कहो दो आमिलों की वजह से। जैसे जरबतु हु तादीबन, मैंने उसकी पिटाई की, किस लिए? अदब सिखाने के लिए। तो यहां पर भी इसी तरह है। या दूसरी मिसाल ले लें, कअतुल अनिल हरबी जुबनन, मैं जंग से बैठा बुजदिली की वजह से। कातु अनिल हरबी जुबनान, ये जुबनान भी क्या है? मफूल लहू है। तवज्जो है भाई, मैंने बताया था मफूल लहू दो किस्म पर हैं। बाज औकात फेल सबब होता है मफूल लहू का, और बाज औकात मफूल लहू सबब होता है फेल का। जरब तू हूं तादीबन, मैंने उसकी पिटाई की, तादीबन अदब सिखाने के लिए। तो जर्ब यानी पिटाई करना सबब है, और अदब का सीखना मुसबब है। तवज्जो है। और कभी कभार इसका बरअक्स होता है, मफूल लहू इल्लत होता है माकबल वाले फेल की। कातु अनिल हरबी जुबनान, कातु अनिल हरबी, मैं जंग से बैठ गया, यानी मैं जंग में नहीं गया, मैंने शिरकत नहीं की, जुबनान बुजदिली की वजह से। तो अब देखो, बुजदिली पहले है और जंग से बैठना उसके बाद है। पहली सूरत में क्या था? जरब तो हूं तादीबन, जर पहले है और फिर उसके बाद अदब का सीखना है। जबकि यहां पर कात तो अनिल हरबी जुबनान, मैं जंग से बैठा बुजदिली की वजह से। देखो, पहले से बुजदिली थी, उसकी वजह से जंग में नहीं गया। तो दोनों में तर्जमा कैसे करते हैं? देखो, दोनों में तर्जमे में भी फर्क होगा। जरब तो हूं तादीबन, मैंने उसकी पिटाई की अदब सिखाने के लिए
जी।
अदब सिखाने के लिए, यहां के लिए के साथ उमूमन तर्जमा हो जाता है बेहतरीन। और अगर कातु अनिल हरबी जुबनन, मैं जंग से बैठा बुजदिली के लिए, देखो माना सही नहीं, तर्जमा कैसे करेंगे? मैं जंग से बैठा बुजदिली की वजह से, तो यहां की वजह से आएगा। तो मफूल लहू कभी मुकदम होता है फेल पर, तो वहां और तरह तर्जमा होगा, और कभी मुअख्खर होता है तो वहां और तरह तर्जमा होगा। तो यहां पर भी वह इजा उतीफा, और जब अतफ किया जाए बिना अन आला वजूदी आमिलैनी, दो आमिलों के वजूद की बिना पर, दो आमिलों के वजूद की वजह से
जी।
तर्जमा समझ में आ रहा है? मैं जंग से बैठा बुजदिली की वजह से, यहां भी इसी तरह। और जब अतफ किया जाए दो आमिलों के वजूद की वजह से, तो एक जवाब यह, यहां साहिब काफिया की इबारत बजाहिर सही नहीं थी
जी।
तो बाद शारहीन ने क्या कहा? यहां मामूलैन का लफ्ज मुजाह महजूफ है, जो मैंने शुरू में तकरीर कर दी। वह इजा उतीफा अला मामूला आमिलैन, जो दो आमिलों के दो मामूलों पर आतफ किया जाए तो इबारत ठीक हो गई। दूसरी सूरत साहिब जामी बतला रहे हैं कि वह इदा उतिफा बिना अन आला वजूदी आमिलैन, जब आतफ किया जाए दो आमिलों के वजूद की वजह से, अब यह इबारत ठीक हो गई। दो आमिलों के वजूद की वजह से आतफ किया जाए, यह नहीं कह रहे कि दो आमिलों पर आतफ किया जाए बल्कि उनके वजूद की वजह से आतफ किया जाए उनके मामूलों पर। और तीसरी सूरत जो है वो भी साहिब जामी आगे बयान करेंगे, बल्कि वो भी यही समझ लें, तीसरा जवाब देंगे, किसी और शारह का कौल जिक्र करेंगे। वो फरमाते हैं कि यहां पर आतफ से मुराद आतफ इस्तेलाही ना लें, तो वो इस्तेलाही आतफ वाला माना यहां ना करें बल्कि आतफ यहां लुगवी माना कर लें। अरबी जुबान में आतफ किसे कहते हैं, याद रखो अरबी जुबान में आतफ का माना है माइल करना, एक चीज को दूसरी चीज की तरफ माइल करना, उसकी तरफ झुकाना, एक चीज को दूसरी चीज की तरफ माइल करना, उसकी तरफ झुकाना, उसके करीब करना, तो यहां पर भी है। वो कहते हैं वह ईदा उतिफा, और जब माइल किया जाए और जब माइल किया जाए तो इस्मों को अला आमिलैनी, किस पर,
दो
आमिलों पर, यानी उनके लिए मामूल बनाया जाए। देखो इधर देखो, इस मिसाल पे नजर रखें, मा कुल्लू सौदा अतमरतन व बैजा अशहमतन, ये जो बैजा और शहमतन इन दो इस्मों को जो मातूफ हैं, ये पहले तो मातूफ नहीं थे, हम इन दो इस्मों को लाए और हमने इनको माइल किया इन दो आमिलों की तरफ, यानी इनको भी इनका मामूल बना दिया, अतफ करके क्या कर दिया, इनको भी उनका मामूल बना दिया। तो देखा दो इस्मों को माइल कर दिया गया दो आमिलों की तरफ, यानी उनके लिए मामूल बना दिया गया बवास्ते अतफ के। बात समझ में आ गई, तो ये तीन माना बयान करेंगे। फिर देखिए मतन दोबारा शुरू से शरा के साथ कहते हैं, वह ईदा उतिफा आई ईदा ऊकी अल अतफ, आई ईदा ओके अल अतफ, जब अतफ को वाकया किया जाए। क्या बतलाना चाहते हैं साहिब जामी इससे, मतन में तो आया हुआ ईजा उतिफा और आगे वो फरमाते हैं आई ईजा ऊके अल अतफ, जब अतफ को वाक किया जाए। ऊके अल अतफ, ऊकिया फिल मजहूल और अल अतफ उसके लिए क्या है, नायबुल फाइल है। बतलाना ये चाहते हैं कि वह ईदा उतिफा, उतिफा फेले मजहूल है और फेले मजहूल के लिए क्या चाहिए, नायबुल फाइल, तो इसका नायबुल फाइल क्या है, किसका आतफ किया जाए। तो बतलाया इस उतिफा के अंदर जमीर है जो इसी के मस्दर को लौट रही है, इस उतिफा के अंदर जमीर है जो इसी के मस्दर को लौट रही है। मैंने आपको पहले भी बतलाया था, याद रखें ये जाब्ता आपको जगह जगह बहुत काम आएगा। बाज औकात एक फेल के फाइल या नाई फाइल का पता नहीं चल रहा होता, तो फिर उस फेल के फाइल या नाई फाइल जो जमीर उसके अंदर होती है वो उसी के मस्दर की तरफ लौटा देते हैं। जैसे मैंने मिसाल जिक्र की थी कि मंतिक की किताबों में इबारत आती है या जैसे सुल्लम में इबारत आती है, इल्ला लदारा और तसलसला, लदारा ये लाम ताकीद के लिए है और दारा फेल है और तसलसला, तसलसला भी फेल है, दारा यदूरु दौरन, तो दारा फेल है और इसके अंदर फाइल हुआ जमीर है। अब हुआ जमीर किसको राजे है, तो उलमा फरमाते हैं कि इसके अंदर जमीर इसी के मस्तर को राजे है, इसी के, तो दारा हुआ और ये हुआ किसको राजे, इसी के मस्तर को, और इसका मस्तर क्या है, दौर है, तो जरा हुआ को हटाओ और दौर को खुद यहां ले आओ। आई इल्ला लदारा दौरू, इल्ला लदारा दौरू, और इसी तरह तसलसला के अंदर हुआ जमीर है और वो इसी तसलसला के मस्तर को राजे है, आई लतसलसलत तसलसलू। अच्छा फिर इसका तर्जमा कैसे करेंगे, तर्जमे के तरीका भी मैंने बतलाया था, लदारा दौरू आई हासलत दौरू, लदारा दौरू हासलत दौरू, या यूं कहो यकाउ दौरू, दौर हासिल होगा यानी दौर साबित होगा, या यकाउ दौरू, दौर वाके होगा, क्या हो जाएगा, दौर वाके हो जाएगा। तो इल्ला लदारा या दौर वाके होगा और तसलसला या तसलसुल वाके होगा। तो यहां पर भी इसी तरह है कि उतिफा फेले मजहूल है और इसके नाइफाइल का पता नहीं चल रहा, तो बतलाया कि वो नाइफाइल इसी का मस्तर है और वो मस्तर जरा ले आओ। इजा उतिफल आतफू, इजा उतिफल आतफू, और फिर इसको उस तावील में ले जाओ, और ये फेले मजहूल है तो लिहाजा यकाउ ना लाए बल्कि उसी के मुताबिक ले आए। ऊके अल आतफू फेले मजहूल है ना, यकाउ तो मारूफ हमने निकाला था, आप इसी के मुताबिक निकाल लें। आई ऊके अल आतफू, जब आतफ को वाके किया जाए, या मारूफ से भी आप तर्जमा कर सकते हैं आई यकाउ अल आतफू, जब आतफ वाके हो, लेकिन ऊकिया निकाला ताकि और जरा मुनासिबत आ जाए, ये फेले मजहूल है तो आगे यकाउ के बजाय फेल भी मजहूल निकाल लिया। ऊकिया अल आतफू का क्या माना, जब आतफ हो, जब आतफ हो, आतफ वाके किया जाए, यानी जब आतफ वाके हो, बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वह ईदा उतिफा आई ईदा ऊके अल आतफू, जब आतफ वाके किया जाए, बिना अन अला वजूद आमिलैनी, बिना बर दो आमिलों के वजूद के, दो आमिलों के वजूद की वजह से, जब आतफ किया जाए दो आमिलों के वजूद की वजह से, बि अन उतिफस्मानी अला, सूरत बतला रहे हैं कैसे, बि अन उतिफा बाई सूरत के आतफ किया जाए, इस्मानी दो इस्मों का, अला मामूल ही मा, उन दो आमिलों के मामूलों पर, दो इस्मों का आतफ किया जाए, वो जो दो आमिल थे उनके मामूलों पर। कहते हैं बि अन उतिफस्मानी बाई सूरत के आतफ किया जाए दो इस्मों का, आला मामूल ही मा, उन दो आमिलों के दो मामूलों पर, बे आतिफिन वाहिदिन, एक ही हर्फ आतफ के साथ। ये एक सूरत हो गई इबारत सही करने की। अब दूसरी सूरत जिक्र कर रहे हैं, वकाल बाजु शारिहिल लुबाबी, बाजु शारिहीना, नून इजाफत की वजह से गिर गया, तो शारिहीन जमा है, तो और ये लुबाब याद रखो ये एक किताब का नाम है, लुबाबुल अराब मशहूर किताब है इल्मे नहु की, जो अल्लामा ताजुद्दीन इस्फिराइनी उनकी किताब है और ये बहुत बड़े नहवी गुजरे हैं। तो लुबाब के बाज़े शारहीन ने लिखा है, लुबाब के बाज़े शारहीन ने लिखा है, यानी जिन्होंने इस किताब की भी शरह की होगी, लुबाब की भी शरह की होगी। तो कहते हैं वकाल बाजु शारहिल लुबाबी, और लुबाब किताब के बाज़े शारहीन ने कहा है, अल अजहर इंदी, वो शारह फरमाते हैं, अल अजहर इंदी, मेरे नजदीक ज्यादा जाहिर यह है, यानी इबारत हल कर रहे हैं, मेरे नजदीक ज्यादा जाहिर यह है कि अन अल अत्फ हाहुना महमूल अला मानाहुल लुगवी, कि अतफ यहां पर महमूल है अपने लुगवी माना पर, यानी अरबी जुबान में जो इसका माना है। तो कहते हैं महमूल अला मानाहुल लुगवी ऐ इमालतिल इस्मैनी, वो लुगवी माना क्या है, ऐ इमालतिल इस्मैनी, यानी दो इस्मों को माइल करना, नहवल आमिलैनी, नहव उनका माना है तरफ जानिब, दो इस्मों को माइल करना, नहवल आमिलैनी, उन दो आमिलों की जानिब, बि अन युजअला मामूलैहिमा, बई सूरत के इन दोनों इस्मों को उन दो आमिलों के लिए मामूल बना दिया जाए। अब तीसरी सूरत जिक्र कर रहे हैं, पहली सूरत क्या इबारत हल कर रहे हैं, वह इजा उतिफा अला आमिलैनी, पहली इबारत क्या हल की कि बिना अन अला वजूद आमिलैनी, आतफ किया जाए दो आमिलों के वजूद की वजह से, आमिलों पर आतफ नहीं है बल्कि उनके वजूद की वजह से आतफ है। और दूसरा क्या कि आतफ से लुगवी माना मुराद ले लें, माइल करना, दो इस्मों को माइल करके, दो इस्मों को माइल करके दो आमिलों का मामूल बना देना आतफ के जरिए। लेकिन कहते हैं वह अक्सर शारहीना अला अन्नल माना, लेकिन अक्सर शारहीन इस बात पर हैं कि माना जो है अला मामूल आमिलैनी, कि इबारत का माना अला मामूल आमिलैनी पर है, यानी यहां मामूल लफ्ज़ मुजाफ महजूफ है, बात समझ में आ गई। और फिर आगे वह इन नमा काला अला मामूल आमिलैनी, इसी की शरह शुरू कर दी
जी।
अक्सर ने क्या कहा, यहां मामूलैन का लफ्ज़ मुजाफ महजूफ है, और उसी पर फिर आगे शारह जामी ने शरह भी शुरू कर दी। मालूम हुआ शारह जामी के नजदीक भी यही ज्यादा पसंदीदा है कि यहां मामूलैन का लफ्ज़ मुजाफ महजूफ निकाला जाए। तो कहते हैं इन नमा काला अला मामूल आमिलैनी, कहते हैं मातिन ने अला मामूल आमिलैनी कहा, ला अला मामूल आमिलिन वाहिदिन, एक आमिल के दो मामूलों पर यह वाली इबारत जिक्र नहीं की, अला मामूल आमिलिन वाहिदिन नहीं कहा, फइन्नहु जायजुन इत्तिफाकन, इसलिए क्योंकि यह तो बिल इत्तिफाक जायज है। नहवु जरबा जैदुन अमरन व अमरुन खालिदन, तो देखो अमरुन का अतफ किस पर, जैदुन पर, और खालिदन का अतफ किस पर, अमरन पर, तो दो इस्मों का अतफ हुआ दो मामूलों पर, और आमिल जरबा एक ही है तो यह बिल इत्तेफाक जायज है
जी।
तो कहते हैं यह चूंकि बिल इत्तेफाक जायज है इसलिए यह नहीं कहा आला मामूल आमिल इन वाहिदिन वला अला अक्सरा मिनिस नैनी, और नीज दो से ज्यादा, तवज्जो है, दो से ज्यादा आमिलों की बात भी नहीं की। क्यों, फइन्नहु ला खिलाफ फिम्तिनाही, इसलिए क्योंकि उनके मुमतने होने में तो कोई इख्तिलाफ ही नहीं है। आप तीन इस्मों का अतफ करना चाहते हैं किस पर, तीन ऐसे मामूलों पर कि जिनमें तीन ही आमिल हैं, तो इसकी तो बात ही नहीं की क्योंकि इसके तो मुमतने होने में कोई इख्तिलाफ ही नहीं, ये तो बिल इत्तेफाक मुमतने हैं। आमिल एक हो तो बिल इत्तेफाक जायज, आमिल दो हो तो इख्तिलाफ, और अगर आमिल तीन हैं या ज्यादा तो बिल इत्तेफाक ममनू हैं। तो कहते हैं फिर देखिए इबारत, कहते हैं वह इन्नमा काला अला मामूल आमिलैन, के मातिन ने अला मामूल आमिलैन कहा, ला अला मामूल आमिलिन वाहिदिन, अला मामूल आमिलिन वाहिदिन नहीं कहा, फइन्नहु जायजुन इत्तिफाकन, क्योंकि ये तो बिल इत्तिफाक जायज है। नहु ज़रबा ज़ैदुन अमरन व अमरुन खालिदन, वला अला अक्सरा मिन इस्नैन, और मातिन ने अला अक्सरा मिन इस्नैन भी नहीं कहा, फइन्नहु ला खिलाफ फिम्तिनाही, इसलिए क्योंकि इसके मुमतने होने में तो कोई इख्तिलाफ नहीं। मुख्तलिफैनी, ये मतन आ गया, मुख्तलिफैनी आमिलैनी मुख्तलिफैनी, ऐसे दो आमिल जो मुख्तलिफ हों। अब तशरीह कर रहे हैं साहिब जामी, अय गैर मुत्तहिदैनी, यानी वो दोनों आमिल मुत्तहिद ना हो, बी अन ला यकूना सानी ऐन अल अव्वली, बाई सूरत के दूसरा आमिल ऐन अव्वल हो
जी।
दूसरा आमिल ऐन अव्वल हो, जैसे ये दो तीन लफ्जों के बाद मिसाल आ रही है वो जरा देख लें, जराबा जराबा जैदुन आमरन व बकरुन खालिदन, तवज्जो है, जराबा जराबा दो दफा आया, याद रखो एक ही लफ्ज जब दो दफा आए तो दूसरा पहले के लिए ताकीद लफ्जी होता है, तो पहला जराबा हुआ मुअक्कद और दूसरा जराबा हुआ ताकीद, और ये जो आगे जैदुन और अमरन फाइल और मफूल आ रहे हैं इसमें पहला जराबा आमिल है, दूसरा जराबा आमिल नहीं, वो तो सिर्फ ताकीद है। तवज्जो है, तो साहिबे जामी आपको बतलाएंगे कि जो मतन में आया ना आमिलैनी मुख्तलिफैनी, दो मुख्तलिफ आमिल, तो ये जो मुख्तलिफैन की कैद आई तो ये इस जैसी मिसालों को निकालने के लिए है, ताकि कोई शख्स ये वहम ना करे कि यहां भी तो दो आमिल हैं, जराबा जराबा दो दफा आया। कहते हैं नहीं, वो आमिल मुख्तलिफ होने चाहिए, दूसरा आमिल ऐन अव्वल नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं मुख्तलिफैनी अय गैर मुत्तहिदैनी, यानी वो दो आमिल मुत्तहिद ना हो, भी अल्ला यकून असानी ऐन अल अव्वली, बाई सूरत के दूसरा आमिल वो ऐन अव्वल हो, वदालिका लिदफ़ वहमी मन यतवहमु, और कहते हैं ये दूर करने के लिए है वो उस वहम को, अगर कोई वहम करे, अगर कोई वहम करे तो उस वहम को दूर करने के लिए है। तो कहते हैं वदालिका लिदफ़ वहमी मन यतवहमु, और कोई शख्स जो वहम करे उसके इस वहम को यह दूर करने के लिए है कि अन्ना मिसला, कि इस जैसी मिसालें जो हैं, जराबा जराबा जैदुन अमरन व बकरुन खालिदन, कोई ये वहम करे कि ये जो इस जैसी जो मिसालें हैं, मिन हादल बाबी, कि वो भी इसी बाब से हैं, मा अन्नहु लैसा मिन्हु, बावजूद इसके कि ये इस बाब से नहीं है ये इस किस्म की मिसालें, लिअदम तअद्दुदिल आमिली फीही, इसलिए क्योंकि इसके अंदर आमिल मुतअद्दिद नहीं है, आमिल एक ही है, पहला जराबा दूसरा जराबा तो उसी की ताकीद है, इज़िल आमिल हुवल अव्वलु, इसलिए क्योंकि आमिल जो है वो पहला ही है, यानी पहला ज़रबा है, वस्सानी ताकीदुन लहू, और दूसरा ज़रबा उसी के लिए ताकीद है, वज़ालिकल अत्फ कमा वक़अ फ़ी क़ौलिहिम, और ये अतफ जैसे कि वाक़े हुआ है बाज़ अरबों के इस कौल के अंदर, मा कुल्लु सौदा अतमरतन व बैज़ा अशहमतन, कि हर काली चीज खजूर नहीं होती और हर सफेद चीज चर्बी नहीं होती। وفی قولی شاعر, اور یہ اسی طرح ہے جیسے اس عربی شاعر کے قول میں واقع ہوا ہے, اکل امری ان تحسبین امرا و نار ان توقد باللیل نارا, اکل امری ان تحسبین امرا و نار ان توقد باللیل نارا. ترجمہ سمجھ لیجئے, یہ شعر ہے بھائی, اکل امری ان تحسبین امرا, تحسبین یہ واحد مونس حاضر کا صیغہ ہے, حسیبہ یحسبو سے فعل مضارے ہے, اور یہ افعال قلوب میں سے ہے. حسیبہ یحسبو کس میں سے ہے؟ کسی کے بارے میں گمان کرنا, تو یہ افعال قلوب میں سے ہے, اور افعال قلوب دو مفعول چاہتے ہیں. حسبت زیدن عالمن, میں نے زید کے بارے میں گمان کیا, عالمن کہ وہ عالم ہے. تو یہاں پر بھی تحسبین فعل آیا, اور یہ کتنے مفعول چاہتا ہے؟ دو. پہلا مفعول مقدم ہے, کل امرئن, کل مضاف, امرئن مضافون الیہ, امرئن آدمی, آدمی مرد, اور یہ شروع میں حمزہ جو آ رہا ہے اکل امرئن, یہ حمزہ استفہام کے لیے ہے, اور امرئن یہ مفعول ثانی ہے. یہ کیا ہے؟ اکل امرئن تحسبین امرئن, تحسبین کو ذرا مقدم کر دیں, اتحسبین کل امرئن امرئن, کیا تو گمان کرتی ہے ہر مرد کو, امرئن مرد, کامل مرد. تو یہ شاعر ہے, تو اس کی بیوی نے کسی اور کی تعریف کی اور شاعر کی تعریف نہیں کی, اس کو کوئی برا بھلا کہا ہوگا, کوئی جھگڑا ہوگا, تو شاعر کہتا ہے ترتیب دے دو بھائی, اتحسبین کیا تو گمان کرتی ہے, کل امرئن ہر آدمی کو, امرئن آدمی, کیا تو ہر آدمی کو آدمی گمان کرتی ہے, یعنی کیا تجھے جو بھی آدمی نظر آتا ہے تو اس کو کامل آدمی سمجھتی ہے, خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہیں, حسن و جمال والا ہے, تو سمجھتی ہے شاید اس کے اخلاق بھی اچھے ہیں اور وہ بہادر بھی ہے, وہ سخی بھی ہے, مگر یہ تیرا گمان ہی ہے, ایسا نہیں ہے. دیکھو استفہام ہے, اکل امرئن تحسبین امرئن, کیا تو ہر مرد کو مرد تصور کرتی ہے, یعنی کامل مرد اور اچھے اخلاق والا, یہ تیرا گمان صحیح نہیں ہے. اور اسی طرح آگے دیکھیے اگلا مصرع ہے, ونارن توقد باللیل, توقد یہ فعل مضارع ہے, توقد یتوقد, یتوقد, اور پھر آگے مؤنث کا صیغہ ہے تتوقد, توجہ ہے, تتوقد, کیونکہ نار عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے, اور دیکھو نکرہ ہے نارن, نارن نکرہ آیا, اور نکرہ کے بعد فعل آیا, میں نے آپ کو بتلایا تھا وہ اس فعل اس کے لیے صفت بنتا ہے, تو توقد یہ صفت ہے نار کی, تو لہذا مؤنث کا صیغہ لائے, اس کے اندر ہیا ضمیر ہے جو اس نار کو لوٹ رہی ہے, نارن ایسی آگ, تتوقد باللیل جو رات کو جل رہی ہو, ایسی آگ جو رات کو جل رہی ہو, تو ہونا یوں چاہیے تھا تتوقد, دو تا ہونی چاہیے, لیکن آپ نے ضابطہ پڑا ہے کہ باب تفاعل اور باب تفاعل ان کے شروع میں اگر دو تا مفتوح آ جائیں, یعنی دو تا ہوں اور دونوں مفتوح ہوں, تو ایک کو حذف کرنا جائز ہے, ایک کو حذف, تو تتوقد تھا, ایک تا حذف کر دی, کیا رہ گیا توقد, تو ماضی کیا ہے توقد, اور مضارع کیا ہے توقد, یہ دال پر جو ضمہ ہے یہ بتلا رہا ہے یہ ماضی نہیں ہے مضارع ہے, ماضی تو مبنی علی الفتح ہوتی ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے قرآن میں آیا ہے, قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا, دیکھو تنزل اصل میں کیا تھا, تتنزل, یہاں سے ایک تا حذف کر دی گئی, کیونکہ جب دو تا مفتوحہ باب تفاعل یا تفاعل میں جمع ہو جائیں تو ایک کو حذف کرنا جائز ہے, لیکن دونوں تا مفتوح ہونی چاہیے, دونوں تا پر زبر ہونی چاہیے. تو توقد کا معنی آگ کا جلنا بھی اور آگ کا جلانا بھی, یعنی یہ لازمی بھی استعمال ہوتا ہے اور متعدی بھی, تو یہاں یہ لازمی ہے. وَنَارٍ تَوَقَّدُ بِاللَّيْلِ, اور تو کیا گمان کرتی ہے ہر ایسی آگ, تَوَقَّدُ بِاللَّيْلِ جو رات کو جل رہی ہو, نارن کہ وہ آگ ہے, وہ آگ ہے, یعنی क्या हर वो आग जो तुझे रात को दिखाई दे तू उसको आग समझती है कि शायद किसी अच्छे आदमी ने आग जलाई हुई है, किसी की मेहमान नवाजी कर रहा है, उसके लिए कुछ बना रहा है खाना वगैरह, हो सकता है वो आग चोरों ने डाकुओं ने जलाई हो भाई, तो उसके करीब जाओगे तो फायदा नहीं होगा नुकसान होगा। तो वही बात, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। तो क्या हर आदमी जिसको तू देखती है तू उसको कामिल आदमी समझती है, और हर आग जो रात को जल रही हो तू उसको अच्छी आग समझती है? तेरा यह गुमान सही नहीं है। बात समझ में आ गई। जाहिर में एक शख्स कितने ही हुस्न जमाल वाला हो, कितने ही अच्छे कपड़े उसने पहने हो, इससे उसका पता नहीं चलता कि मालूम नहीं वो किस किस्म के अखलाक का मालिक है, अच्छे अखलाक वाला है या हर वक्त दूसरों को तकलीफ देने वाला है। तो पहला मिसरा क्या है? अकुल्लम्री इन तहसबी नम्रअन, तो कुल्लम्री इन ये मफूल अव्वल है और इम्रअन ये क्या है? मफूल सानी है तहसबीना के लिए, तवज्जो है। तो पहला मफूल क्या? कुल्लम्री इन, कुल्ला मुजाफ और इमरी इन मुजाफोन इल है। आगे जो आ रहा है अगले मिसरे में व नार इन, इस नार का आतफ है पहले कुल्लम्री इन का जो मुजाफिले है इमरी इन पर, और वो तो मजरूर है, उसको कुल्लू का लफ्ज जो मुजाफ है वो जर दे रहा है। तो नारिन आई कुल्ला नारिन, तवज्जो है। तो नार का पहले नार का आतफ किस पर? कुल्लम्री इन के अंदर जो मुजाफिले है इमरी इन का लफ्ज भाई उस पर आतफ है। और तवक्कदु बिललैल ये इस नार की सिफत है, और आगे नारन आया, इस नारन का आतफ है पीछे जो इमरान मफूल सानी आया था, तवज्जो है। तो मालूम हुआ पहले नार का आतफ है इमरी इन पर, और उस इमरी इन के अंदर आमिल कुल्लू का लफ्ज है, आमिल कुल्लू का लफ्ज है जो मुजाफ उसको जर दे रहा है, और दूसरे नारन का आतफ है इमरान पर और वो मफूल सानी है तहसबीना के लिए, तो उसके अंदर तहसबीना आमिल है। तो देखो दो इस्मों का आतफ हो रहा है दो ऐसे मामूलों पर जिनके आमिल अलग अलग हैं। बात समझ में आ गई। तो देखो ये अरबी का एक फसीह बलीग शायर जो है मजरूर मुकद्दम है तो अतफ कर रहा है दो इस्मों का ऐसे दो मामूलों पर जिनके आमिल मुख्तलिफ हैं। और मैंने बताया कि ये हमजा इस्तेफाम के लिए है, अकुल्लम्री इन तहसबीन अम्रआ, ये इस्तेफाम के लिए है और ये इस्तेफाम इनकारी है। इस्तेफाम इनकारी किसे कहते हैं? जहां सवाल नहीं मकसूद होता बल्कि एक चीज का इनकार और उसको रद्द करना मकसूद होता है। क्या तू हर आदमी को कामिल आदमी समझती है और क्या हर आग जो रात को जल रही हो तो उसको अच्छी आग समझती है? तेरा यह गुमान सही नहीं। तो यहां इस्तेफाम मकसूद नहीं है बल्कि इनकार और रद्द मकसूद है। तो कहते हैं वफी कौली शायर, और जैसे कि यह आतफ वाके हुआ है शायर के इस कौल में, अकुल्लम्री इन तहसबीन अम्रआ व नारिन तवक्कदु बिललैलि नारा फहादा, तो ये वाला आतफ व इन का नबी हसब जाहिरी जायजन, अगरचे जाहिर के एतबार से जायज है, लेकिन नहु लम यजुज इंदल जमहूरी, लेकिन यह जायज नहीं है जमहूर के नजदीक, बिहसब हकीकती हकीकत के एतबार से। अब इस बात को समझ लो, देखो भाई यहां शर्त और जजा में मुताबकत नहीं है। शर्त क्या आई थी? वह ईजा उतिफा अला आमिलैनी मुख्तलिफैनी, और जब आतफ किया जाए दो मुख्तलिफ आमिलों के दो मामूलों पर, लम या जुज, तो यह जायज नहीं। भाई क्या माना? जब आतफ कर लिया तो फिर जायज ना होने का क्या माना? वह ईजा उतिफा, तवज्जो है, वह ईजा उतिफा अला अमामुल आमिलैनी मुख्तलिफैनी, जब आतफ कर लिया जाए दो आमिलों के दो मामूलों पर, लम यजुज, तो फिर यह जायज नहीं। जब आतफ कर लिया जाए तो फिर जायज नहीं। तो मालूम है शर्त और जजा में मुताबकत नहीं, क्योंकि शर्त के अंदर ईजा आया, और याद रखो ईजा यकीन के लिए आता है। किसके लिए? जिस चीज में शक हो उसके लिए ईजा नहीं लाते, यकीन के लिए ईजा लाते हैं, शक के लिए इन लाते हैं। किसके लिए? इन। लिहाजा जो चीज यकीनी हो वहां इन नहीं ला सकते। मसलन मैं कहता हूं इन तलाअति शम्सु गदन, अगर कल सूरज तुलू हुआ, भाई सूरज का तुलू होना यकीनी है या नहीं? सूरज का तुलू होना तो यकीनी है, लिहाजा इन यहां नहीं ला सकते भाई। इजा तलाअति शम्सु, जब सूरज तुलू होगा कल, इजा तलाति शम्सु गदन फनाती इलैका, जब सूरज का तुलू होगा तो हम आपके पास आएंगे। तो देखो यहां इजा लाए, क्योंकि सूरज का तुलू होना यकीनी, तो यकीन के लिए इजा लाते हैं और शक के लिए इन। मसलन इन दखलती दारा फांती तालिकुन, अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है। देखो यहां इस औरत का उस घर में जाना यकीनी नहीं, तो शक के लिए इन लाते हैं और यकीन के लिए इजा। तो यहां इजा आया और नीज उतीफा माजी का सीगा आया, तो माजी का सीगा आया और माजी भी यकीन के लिए आता है। एक चीज जो हो चुकी है वो यकीनी है, उसके होने में कोई शक नहीं। तो इजा भी यकीन के लिए और उतीफा माजी का सीगा भी यकीन के लिए, तो ये तो एक चीज के वकूअ पर दलालत कर रहे हैं कि एक चीज क्या है, वाकिअ है। और जजा में लम या जुज कहा जा रहा है, अदम जवाज को जिक्र किया जा रहा है। शर्त में है वकूअ, वकूअ और जजा क्या है, अदम जवाज। तो वकूअ के साथ अदम जवाज जजा मुताबिक नहीं है। जब आप अतफ कर लें तो यह जायज नहीं। भाई जब अतफ कर लिया वकूअ हो गया तो जायज न होने का क्या माना, बात समझ में आ गई। तो साहिब जामी अब उसका जवाब देना चाहते हैं। साहिब जामी देखो एक सूरत यह भी थी, याद रखो अरबी जुबान में कभी फेल बोलकर इरादा फेल मुराद होता है, फेल बोलकर इरादा फेल मुराद होता है। जैसे कुरान में है या युहल्लदीना आमनु इदा कुम तुम इलस सलाती, जब नमाज के लिए खड़े हो जाओ, तो जब आप नमाज के लिए सफों के अंदर खड़े हो जाते हैं फिर जाकर वजू करते हैं या वजू पहले करते हैं, वजू पहले करते हैं। तो यहां कियाम बोलकर इरादा कियाम मुराद है। या युहल्लदीना आमनु इदा कुम तुम इदा अरद तुमुल कियाम, जब तुम्हारा नमाज के लिए खड़े होने का इरादा हो तो क्या कर लो, वुजू कर लो। तो देहा मालूम हो कियाम बोलकर इरादा कियाम मुराद है। इसी तरह हदीस में आता है इदा दखल तुमुल खला, जब तुम बैतुल खला में दाखिल हो तो ये दुआ पढ़ लो। तो दुआ बैतुल खला के अंदर जाकर पढ़ते हैं या पहले पढ़ते हैं, पहले। तो लिहाजा यहां भी दखल तुम बोलकर इरादा दुखूल मुराद है, जब तुम्हारा बैतुल खला में दाखिल होने का इरादा हो तो यह दुआ पढ़ लो। बात समझ में आ रही है। तो अरबी में कभी फेल बोलकर इरादा फेल मुराद होता है। तो यहां पर अगर ऐसा किया जाए वह इदा उतीफा, आपने क्या कहा, आतफ कर लिया तो जायज नहीं, मुताबकत नहीं। भाई आतफ ना मुराद लो, इरादा आतफ मुराद ले लो। जब तुम्हारा इस किस्म के आतफ का इरादा हो तो वह जायज नहीं जी। जब तुम्हारा हां, तो देखो अब तो वो खत्म हो गया। पहले क्या था कि एक चीज वाकई हो गई है, फिर लम यजूस का क्या माना, तो अब बताया कि नहीं वाकई नहीं हुई, सिर्फ उसका इरादा किया है। जब तुम्हारा आतफ का इरादा हो जाए तो कहते हैं नहीं, फिर भी शर्त और जजा में मुताबकत नहीं। कैसे मुताबकत नहीं, क्योंकि फिर माना यह हो जाएगा जब तुम्हारा आतफ का इरादा हो तो फिर जायज नहीं। मालूम अगर इरादा ना हो फिर जायज है, जब तुम्हारा आतफ का इरादा हो तो जायज नहीं है। इसे तो साबित हो रहा है कि जब आतफ का इरादा नहीं होगा तो फिर जायज होगा ना। जैसे इन दखलती दार फांती तालिकुन, अगर तू घर में गई तो तुझे तलाक है, मानूंगा घर में नहीं जाएगी तो नहीं तलाक। तो यहां पर भी जब तुम आतफ का इरादा कर लो तो जायज नहीं है, मानूंगा इरादा ना करो तो जायज है, हालांकि इरादा ना करें फिर भी जायज नहीं है। लिहाजा इस सूरत में भी जजा क्या है, शर्त के मुताबिक नहीं बनती अगर आप इरादे का माना भी कर लें। तो साहिब जामी अब आपको बताने लगे हैं कि भाई यहां पर जायज नहीं है हकीकत के एतबार से। इधर देखिए, जब आप आतफ कर लें इस किस्म का लम या जुज, हकीकत के एतबार से यह जायज नहीं है। अगरचे सूरत के एतबार से आपने आतफ कर दिया, सूरत के एतबार से जाहिर के एतबार से जायज हो गया, लेकिन हकीकत के एतबार से अरबी जुबान के एतबार से यह जायज नहीं है। अब बात समझ में आई, जजा क्या हो गई, शर्त के मुताबिक हो गई। क्या बात हुई कि जब आप इस किस्म का आतफ कर लें तो सूरत के एतबार से तो और जाहिर के एतबार से तो जायज हो गया, आपने आतफ कर लिया लेकिन लम या जुज, लेकिन जायज नहीं बेअतबार हकीकती, किस एतबार से, हकीकत के एतबार से और अरबी जुबान के एतबार से जायज नहीं। आप बेशक कर लें, आप बेशक कर लें, आप जुमला बना लें, अतफ कर दें, लेकिन यह सूरतन और जाहिरन जायज हुआ है, हकीकत के एतबार से यह जायज नहीं। اب جزا کیا ہو گئی؟ شرط کے مطابق ہو گئی. یہی بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں فہادا, یعنی یہ والا جو عطف ہے, وہ ان کا نبی حسب ظاہری جائزن, اگرچہ ظاہر کے اعتبار سے جائز ہے, لیکنہ لم یجوز عند الجمہور بحسب الحقیقتی, لیکن یہ جائز نہیں ہے جمہور کے نزدیک حقیقت کے اعتبار سے. لان الحرف الواحد لم یقوا, قویہ یقوا کا معنی قوت والا ہونا, طاقت والا ہونا. لان الحرف الواحد لم یقوا, یاد رکھو قویہ قویہ, جی ہفت اقسام میں کیا ہے؟ قویہ لفیف ہے. کیا ہے؟ لفیف مقرون ہے, واو اور یا دونوں آ رہے ہیں, لیکن چلو لفیف بھی ہے. اگر آپ اس کو مثال اور اجوف کہیں, قویہ کیا ہے؟ اجوف بھی ہے کیونکہ واو درمیان میں ہے عین کی جگہ, اور یا بھی ہے تو ناقص بھی ہے. یہ کیا ہے؟ ناقص بھی کہہ سکتے ہیں. اور یاد رکھنا یہ جو یا تھی نا, یہ بھی واو تھی, اصل میں ہے قویوا, اصل میں کیا ہے؟ قویوا, اسی سے ہے قوتن. دیکھو وہی واو مشدد آ گیا یا نہیں, قوتن. تو قویوا میں دونوں واو تھے, پھر آخر میں جو واو تھا اس سے ماقبل کسرا تھا قویوا, آخری واو سے ماقبل درمیان والے واو پر کیا ہے؟ کسرا. تو کسرے کی وجہ سے اس واو کو کس سے بدلا؟ یا سے. تو قویہ ہوا. بات سمجھ میں آ گئی؟ کہتے ہیں لأن الحرف الواحد لم یقوى, اس لیے کیونکہ حرف واحد جو ہے وہ اتنی قوت والا نہیں ہے کہ یقوم مقام عاملین مختلفین, کہ وہ قائم مقام ہو جائے دو مختلف عاملوں کے, خلاف للفراء بخلاف امام فراء کے. فإنه يجوز هذا العطف بحسب الحقيقة, اس لیے کیونکہ امام فراء وہ اس عطف کو جائز قرار دیتے ہیں, بحسب الحقيقة حقیقت کے اعتبار سے, کما جاز بحسب الصورت, جیسے کہ صورت کے اعتبار سے جائز ہے. صورت کے اعتبار سے آپ عطف کر لیں تو صورت کے اعتبار سے تو جائز ہوگا, لیکن حقیقت کے اعتبار سے جائز نہیں. لیکن امام فرا فرماتے ہیں حقیقت کے اعتبار سے بھی یہ جائز ہے, کما جاز بحسب الصورت, جیسے کہ یہ صورت کے اعتبار سے جائز ہے. ولا یؤول الامثلۃ الواردۃ علیہا, اور ولا یؤول, اور امام فرا تاویل نہیں کرتے. بھائی امام سیبوئے تو تاویل کرتے ہیں, جمہور کہتے ہیں اگر مجرور مقدم ہے تو جائز, امام سیبوئے کرتے ہیں مجرور مقدم ہو پھر بھی نہیں جائز, اور کہتے ہیں وہاں پر مضاف یا خافض جو جر دینے والا ہے وہ محذوف ہے. تو لیکن امام فرا تاویل نہیں کرتے, تو کہتے ہیں ولا یؤول الامثلۃ الواردۃ علیہا, اور امام فرا تاویل نہیں کرتے ان مثالوں میں جو وارد ہوئی ہیں علیہا اس صورت پر, جو مثالیں اس صورت پر آئی ہیں یعنی اس عطف کی صورت پر آئی ہیں ان میں وہ تاویل نہیں کرتے, ان میں کوئی تاویل نہیں کرتے, کیونکہ ان کے نزدیک تمام صورتیں جائز ہیں. تو مجرور مقدم والی صورتیں تو آئی ہیں کلام عرب کے اندر, تو جب ان کے نزدیک ساری صورتیں جائز ہیں تو وہ تاویل کرتے ہی نہیں ہیں, جبکہ امام سیبوئے وہ ان میں پھر تاویل کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ کہ حرف عطف دو کا قائم مقام نہیں ہو سکتا, لہذا وہاں وہ مضاف کو محذوف نکالتے ہیں. جیسے پچھلی مثال آئی تھی ما کل سودا تمرتوں و بیضاء شحمتن, وہ فرماتے ہیں بیضاء کا عطف سودا پر نہیں ہے بلکہ اس بیضاء سے پہلے مضاف کلن کا لفظ محذوف ہے. اے ما کل سودا تمرتن و کل بیضاء شحمتن, تو یہاں وہ مضاف کو محذوف نکالتے ہیں یعنی تاویل کرتے ہیں, جبکہ امام فرا کوئی تاویل نہیں کرتے کیونکہ ان کے نزدیک تمام صورتیں جائز ہیں. تو یہ معنی ہے ولا یؤول الامثلۃ الواردۃ علیہا, تو امام فرا تاویل نہیں کرتے ان مثالوں کی جو وارد ہوئی ہیں علیہا اس عطف کی صورت پر. ولا یقتصر علی صورت السماع, اقتصر یقتصر کے معنی بند ہونا بھی, اور اس کا معنی بند کرنا بھی, اکتفا کرنا, بند کرنا. ولا یقتصر علی صورت السماع, اور وہ اس کو بند نہیں کرتے صرف سماع کی صورت پر, بل یا عمها وغیرہ, بلکہ وہ اس کو عام قرار دیتے ہیں سماع کی صورت پر بھی, وغیرہ اور غیر صورت سماع پر بھی. وعدم جواز ذالک العطف, اور اس عطف کا جائز نہ ہونا مع خلاف الفراء, ساتھ امام فراء کے اختلاف کے, جار ان فی جمیع الموادی, یہ اختلاف جاری ہے تمام مادوں میں, عند الجمہور جمہور کے نزدیک, امام فراء کے ساتھ یہ اختلاف تمام مادوں میں جاری ہے, جمہور تمام صورتوں کو ناجائز کہتے ہیں, الا فی نحوی, مگر سوائے اس جیسی مثالوں کے. इबारत समझ में आ रही है, तो कहते हैं वह आदम जवाजी जालिकल अथी मा खिलाफिल फर्राई, और इस आतफ का जायज न होना मा खिलाफिल फर्राई साथ इमाम फर्रा के इख्तिलाफ के, जारिन ये आदम जवाज जारी है फी जमी इल मवाद दी तमाम मादों के अंदर यानी तमाम सूरतों में, इंदल जमहूरी जमहूर के नजदीक, इल्ला फी नहविफिदारी जैदुन वल हुजरत अमरुन, सिवाय इस जैसी मिसालों के कि जिनमें मजरूर मुकदम है, इसमें जमहूर भी कहते हैं जायज है, इसमें वो इमाम फर्रा से इख्तिलाफ नहीं करते। वह इन नफी दारी जैदन वल हुजरत अमरन, अब इसके अंदर देखो दूसरी मिसाल साहिब जामी जिक्र कर रहे हैं, मतन में क्या था फिद दारी जैदन वल हुजरत अमरन, हुजरत मजरूर मुकदम है वह और आगे अमरुन मरफू मुअखर है, मजरूर मुकदम और मरफू मुअखर, और अगर इसी तरह अगर मनसूब मुअखर हो, मजरूर मुकदम हो और मनसूब मुअखर हो, वो भी सूरत जायज है, उसी की मिसाल आगे साहिब जामी जिक्र कर रहे हैं। वह इन्ना फिदारी जैदन वल हुजरत अमरन, इन्ना के बाद फिदार आया तो ये इसकी खबर मुकदम है और जैदन ये क्या है इसका इसमें मुअखर, और इसी पर आतफ किया वल हुजरत अमरन, तो देखो वल हुजरती मजरूर मुकदम है और अमरन मनसूब मुअखर है, पहली मिसाल में मजरूर मुकदम था और मरफू मुअखर था, तो बहरहाल मजरूर मुकदम होना चाहिए, मरफू और मनसूब बेशक मुअखर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहते हैं यानी इल्ला फी सूरती तकदीम इल मजरूरी, यानी सिर्फ मजरूर के मुकदम करने की सूरत में, व ताखीर इल मरफूई अविल मनसूबी, और मरफू या मनसूब को मुअखर करने की सूरत में। इमाम फर्रा से तमाम सूरतों में जमहूर इख्तिलाफ करते हैं इल्ला फी सूरती तकदीम इल मजरूरी व ताखीर इल मरफूई अविल मनसूब, मगर सिर्फ उस सूरत में कि जब मजरूर को मुकदम किया जाए, व ताखीर इल मरफूई अविल मनसूबी, और मरफू या मनसूब को मुअखर किया जाए, सिर्फ इस सूरत में इख्तिलाफ नहीं करते। लिमजी ही फी कलामिहिम, इस वजह से क्योंकि इस किस्म का आतफ आया है फी कलामिहिम अरबों के कलाम में। वक्त सरल जवाजु अला सूरती समाई, और बंद है जवाज सिर्फ सिमा की सूरत पर। वक्त सरल जवाजु अला सूरती समाई, भाई जमहूर के नजदीक सिर्फ मजरूर मुकदम वाली सूरत क्यों जायज है, बाकी सूरतें क्यों नहीं जायज, वो जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं वक्त सरल जवाजु अला सूरती समाई, सिमा नहीं है समा लफ्ज है भाई, क्या है समा, तवज्जो है, तो ये समा अरबी में समा लफ्ज है लेकिन उर्दू में सीमा राइज हो गया है इसलिए जुबान पर सीमा आता है, तो बस याद रखें ये समा लफ्ज है। अच्छा वक्त असर अल जवाज अला सूरती समाई, और जवाज जो है वो बंद है सीमा की सूरत पर, सिर्फ सीमा की सूरत में जायज है और जवाज बंद है सीमा की सूरत पर, यानी जिन सूरतों में सीमा हुआ है सिर्फ वो जायज है। لِأَنَّمَا خَالَفَ الْقِيَاسَ يَقْتَصِرُ عَلَى مَوْرِدِ السَّمَاعِ, इसलिए क्योंकि वो चीज जो कियास के मुखालिफ होती है, यकतसिर वो बंद होती है, अला मौरिदि समाई सिमा के मौरिद पर, यानी जो सिमा की जगहों पर ही वो बंद होती है। खिलाफल लिसीबवै ही, बखिलाफ इमाम सीबवै के, فَإِنَّهُ لَا يُجَوِّزُ هَذَا الْعَطْفَ, इसलिए क्योंकि वो जायज करार नहीं देते इस आतफ को, بِحَسَبِ الْحَقِيقَةِ फी हादिह सूरती ऐजन, हकीकत के एतबार से वो इस आतफ को जायज करार नहीं देते हकीकत के एतबार से, फी हादिह सूरती ऐजन इस सूरत में भी, मजरूर मुकदम होने की सूरत में भी आतफ को हकीकतन जायज करार नहीं देते, बल यहमिलुहा अला हस्फिल मुजाफी, बल्कि वो उसको महमूल करते हैं मुजाफ के हजफ पर, व इबका मुजाफी इलैहि अला इराबिही, और मुजाफिले को बाकी रखते हुए उसके एराब पर। भाई देखो मुजाफ ने जर दिया मुजाफिले को, तो मुजाफ को तो हजफ कर दिया लेकिन मुजाफिले को उसी अपने जर वाले एराब पर बाकी रखा, हालांकि अमूमन होता क्या है मुजाफ को जब हजफ करते हैं तो मुजाफिले को उसका कायम मकाम करके उस पर मुजाफ वाला एराब पढ़ते हैं
जी।
क्या पढ़ते हैं जब आपने मुजाफ को हजफ किया तो मुजाफिले तो मजरूर था लेकिन अब ये किसका कायम मकाम हो गया मुजाफ का, तो जो एराब मुजाफ पर था अब वो पढ़ते हैं मुजाफिले पर, लेकिन यहां पर क्या किया गया मुजाफ को हजफ करके मुजाफ इलैह को उसी जर वाले अपने एराब पर बाकी रखा गया। बात समझ में आ गई। यह माना है बल यह मिलूहा अला हस्फिल मुजाफी, बल्कि वो इस सूरत को महमूल करते हैं हस्फ मुजाफ पर, कि मुजाफ को हजफ किया गया है। वह इबका इल मुजाफी इलेही अला एराबी ही, और मुजाफिले को बाकी रखा गया है उसके अपने एराब पर। नहव मिसाल के तौर पर कुरान में अल्लाह फरमाते हैं। अब सवाल पैदा होता है, क्या मुजाफ को हजफ करके मुजाफिले को उसी तरह मजरूर बाकी रखना जायज है या नहीं? तो उसके लिए कुरान की आयत जिक्र फरमा रहे हैं कि कुरान की आयत देखो, इसमें मुजाफ को हजफ कर दिया गया और मुजाफिले को उसके अपने एराब यानी जर पर बाकी रखा गया। कैसे? देखो, नहव मिसाल के तौर पर कुरान में अल्लाह फरमाते हैं तुरीदूना अरज़ा दुनिया, तुम लोग दुनियावी फायदे का इरादा कर रहे हो। हां, तो देखो तुरीदूना अरज़ा दुनिया, कुरान में अल्लाह फरमा रहे हैं भाई, बास किताबों के अंदर यहां तुरीदूना अरज़ल हयाती दुनिया होगा। ये याद रखो, किताबत की गलती है। कुरान में अरज़ा दुनिया है, दरमियान में हयात का लफ्ज नहीं। एक और आयत में हयात का लफ्ज आता है, लेकिन इस मकाम पर हयात का लफ्ज यहां मौजूद नहीं, दूसरी जगह है। लितब तगू अरज़ल हयाती दुनिया, लितब तगू अरज़ल हयाती दुनिया, वो और आयत है। इस आयत के अंदर अरज़ल दुनिया है, तो यहां अल हयात का लफ्ज बास किताबों में अगर लिखा है तो ये किताबत की गलती है। तो कहते हैं अल्लाह कुरान में फरमाते हैं तुरीदूना अरज़ल दुनिया, तुम लोग दुनियावी नफे का, दुनियावी फायदे का इरादा कर रहे हो। वल्लाहु युरीदुल आखिरती अयुरीदु अरज़ल आखिरती, और अल्लाह आखिरत के फायदे का इरादा कर रहा है कि अल्लाह तुम्हें आखिरत का फायदा दे। तवज्जो है। तो अब यहां देखो, हमारी किरात जो है कुरान के अंदर वो तो है वल्लाहु युरीदुल आखिरता, ये आखिरता मंसूब है, ये मफूल भी ही है युरीदु के लिए, लेकिन बास किरातों में युरीदुल आखिरती आया है, तो ये क्यों मजरूर है? तो वहां उलमा फरमाते हैं कि यहां मुजाफ महजूफ है। असल में क्या था? युरीदो अरज़ल आखिरती, पीछे एक दफा अरज़ का लफ्ज जिक्र हो गया था, लिहाजा यहां हजफ कर लिया गया, और उसको तो हजफ किया गया लेकिन मुजाफिले को उसी तरह मजरूर छोड़ दिया गया। तो कहते हैं वल्लाहु युरीदुल आखिरती, भाई हमारी किरात में युरीदुल आखिरता है, लेकिन वहां भी अरज़ का लफ्ज मुजाफ महजूफ निकालना पड़ेगा। वल्लाहु युरीदु अरज़ल आखिरती, अरज़ को हजफ किया गया और अरज़ मंसूब था, तो अल आखिरा को उसका कायम मकाम करके उस पर भी नसब पड़ा जाता है। वल्लाहु युरीदुल आखिरता, तवज्जो है, लेकिन यहां बास किरातों में इसी तरह आया है। तो कहते हैं वल्लाहु युरीदुल आखिरती बिजरिल आखिरती, आखिरत के जर के साथ, कमा जा अफी बाजिल किराती, जैसे कि बास किरातों में आया है ऐ अरज़ल आखिरती। तो देखो यहां अरज़ का लफ्ज क्या है? महजूफ है, मुजाफ को हजफ कर लिया गया और मुजाफिले को उसके अपने एराब जर पर बाकी रखा गया। बात समझ में आ गई। चलिए बस, बेहदा हुआ अल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।